राधे मेरी स्वामिनी, मेरा राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सोते रो आधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
राधा माधव कुंज बिहारी,
गोपी जन वन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारी, यमुना तेरा नामचारी
राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधा
ಗಿರಿ ಧರಿ ರಾಧೆ
ಜಯ ಗಿರಿ ಧರಿ ರಾಧಾ ಗಿರಿ ಧರಿ ರಾಧಾ ಗಿರಿ ಧರಿ ರಾಧೆ
ಜಗನ್ನಾಥ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲದೇವ ಜಯ ಪರ ಪ್ರಭು ಪದ ಶುಧ ಪ್ರಭು ಪದ
ಜಯ ಪ್ರಭು ಪದ ಪ್ರಭು ಪದ ಪ್ರಭು ಪದ
ಶುಧ ಪ್ರಭು ಪದ ಜಯ ಜಯ ಪ್ರಭು ಪದ ಪ್ರಭು ಪದ ಪ್ರಭು ಪದ ಪ್ರಭು ಪದ
ಜಯ ಜಯ ಪ್ರಭು ಪದ
ನಿತ್ಯ ಗೌರ ಹರಿ ಬೋಲ ಹರಿ ಹರಿ ಬೋಲ ಹರಿ ಬೋಲ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗಿರಿಧಾರಿ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲದೇವ್ ಸುಭದ್ರಾ ಜೀ ಕೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗೌರ್ನಿತಾಯ ಕೀ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ನಿತಾಯ ಗೌರ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ
ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಸ್ಕಂದ ಪಾಂಚ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಾಂಚ್ ಶ್ಲೋಕ ಕ್ರಮಾಂಕ ದೋ ಔರ್ ತೀನ್
ಮಹತ್ ಸೇವಾ ದ್ವಾರ ಮಾಹು ವಿಮುಕ್ತೆ
ಮಹತ್ ಸೇವಾ ದ್ವಾರ ಮಾಹು ವಿಮುಕ್ತೆ
ತಮೋದ್ವಾರಂ ಯೋಷಿತಾ ಸಂಗಿ ಸಂಗಂ
ತಮೋದ್ವಾರಂ ಯೋಷಿತಾ ಸಂಗಿ ಸಂಗಂ
ಮಹಾಂತಸ್ತೆ ಸಮಚಿತಾ ಪ್ರಶಾಂತ
ಮಹಾಂತಸ್ತೆ ಸಮಚಿತಾ ಪ್ರಶಾಂತ
ವಿಮನ್ಯವಹ ಸೂರಿದ ಸಾಧವೋ ಯೇ
ವಸೋಯಃ ಸಾಧವೋ
ವಾ ಮಹಿಷೇ ಕೃತ ಸೋರಿದಾರ್ಥಾ
ವಾ ಮಹಿಷೇ ಕೃತ ಸೋಯದಾರ್ಥಾ
ಜನೇಷು ದೇಹಾಂಭರವಾರ್ತಿಕೇಶು
ಜನೇಷು ದೇಹಂ ಭರವಾತಿಕೇಶು
ಗೃಹೇಶು ಜಯಾತ್ಮಜರಾತಿಮತ್ಸು
ಗೃಹೇಶು ಜಯಾತ್ಮಜರಾತಿಮತ್ಸು
ನ ಪ್ರೀತಿಯುಕ್ತಾಯವದರ್ಶ ಲೋಕೆ
ನ ಪ್ರೀತಿಯುಕ್ತಾಯವದರ್ಶ ಲೋಕೆ ಮಹ ಸೇವಾ ದ್ವಾರ ಮಾಹೋರ್ವಿಮುಕ್ತೆ
ಮಹ ಸೇವಾ ದ್ವಾರ ಮಾಹೋರ್ವಿಮುಕ್ತೆ
ತಮೋದ್ವಾರಂ ಯೋಷಿತ ಸಂಗಿ ಸಂಗಂ
ತಮೋದ್ವಾರಂ ಯೋಷಿತಾಂ ಸಂಗಿ ಸಂಗಂ
महान्तस्ते संचिता प्रशान्ता
महान्तस्ते संचिता प्रशान्ता
विमन्यवः सूयः सादरो ये
विमन्यवः सूयद् सादवो ये एवामयिषे कृतसो ह्यदार्था
एवामहिषे कृतसो ह्यदार्था
जनेषु देहं भरवार्तिकेषु
जनेषु देहं भरवार्तिकेषु
गृहेषु जायात्मजरातिमत्सु
गृहेषु जायात्मजरातिमत्सु
न प्रीतियुक्ताया वादर्थाश्लोके
न प्रीतियुक्ताय वदार्श्वलोके
कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्येव मे विशतु मा नसराज हंस प्राण प्रयाण समये कफवात पीते कंटावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते योन्त प्रवेश मम वा चमिमां प्रसूक्ता संजीवयत्यखिलश तिधरस्वधाम्ना अन्याशहस्तचरण श्रवणत्वगादी प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पात्र पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा मृतमेत देव गोविंद दामो दरमाधवे हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस चतुर्थ दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत जिसका श्रवण करके हम ज्ञान के साथ भक्ति और वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तद घोषेण बलम महत। पद्म पुराण में कहा गया है, भागवत का श्रवण करने से मात्र कोरा ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता है, श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से ज्ञान के साथ साथ भक्ति और वैराग्य प्राप्त होता है। जीवन में वैराग्य और भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न कराने वाला यह ग्रंथ है, और यह ग्रंथ में मात्र कथा का ही वर्णन नहीं हुआ है। इस भागवत में अनेक सिद्धांत, शिक्षा और उपदेश का निरूपण हुआ है। श्री वेदव्यास जी ने इस भागवत को वेदांत सूत्र का भाष्य कहा है। सभी वेदों का जो सार है वह है वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र का भाष्य है श्रीमद् भागवत, जिससे सभी सिद्धांत प्रकट होते हैं। और हम सबका परम सौभाग्य है कि इस भागवत के अंतर्गत पंचम स्कंद से भगवान ऋषभ देव द्वारा प्रदत्त अपने 100 पुत्रों को अद्भुत उपदेश का हम श्रवण कर रहे हैं। अत्यंत अद्भुत और जीवन का परिवर्तन करने वाला यह उपदेश है। गत सत्र में भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए प्रारंभ में कहे, हे पुत्र का, हे मेरे प्रिय पुत्रों, नृलोके इस पृथ्वी लोक में देह भाजम हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, तो यह मनुष्य का शरीर कामान न अर्हति, काम उपभोग करने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि इस संसार में कामनाओं से कष्ट उत्पन्न होता है। किसी भी प्रकार की इच्छा कामना कष्ट प्रदान करती है, इसलिए मनुष्य जन्म दिव्य तपस्या करने के लिए मिला है, और वह दिव्य तपस्या भगवान वासुदेव के लिए, भगवान विष्णु के लिए होनी चाहिए। और भगवान विष्णु की तपस्या करेंगे, शुद्धेत अस्मात, हमारा अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, और अंतकरण शुद्ध होने से ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, अनित्य एंडलेस हैप्पीनेस, ऐसा सुख प्राप्त होगा जिसका कभी अंत नहीं होगा। सुख तो आज भी हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में हमें जो सुख मिलता है बहुत कम समय के लिए मिलता है, बहुत क्षणिक सुख है। मैंने बहुत वर्ष पहले एक लेख में पढ़ा था, ये भौतिक जगत में कैसा सुख है, मुझे तत्कालिक याद आ रहा है। भौतिक जगत का सुख कैसा है, एक बार एक व्यक्ति घोर घने जंगल में फंस गया, जहां पर मनुष्य कोई नहीं था, वह अकेला था, और उस जंगल से बाहर निकलना चाहता था परंतु रास्ता नहीं मिल रहा था। बहुत प्रयास करने पर भी जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। उतने में उसे सिंह की आवाज, सिंह की गर्जना सुनाई दी और देखा दूर से खूंखार सिंह उसे खाने के लिए दौड़ते हुए आ रहा है। तब यह सिंह पीछा उसका पीछा कर रहा है और ये व्यक्ति दौड़ने लगा, बहुत जोर से भागने लगा। यह व्यक्ति आगे आगे, सिंह पीछे पीछे, अब दौड़ते दौड़ते सोच रहा है कैसे बचा जाए, क्या किया जाए। दौड़ते दौड़ते उन्होंने दूर से एक कुआं देखा और बिल्कुल कुएं के बाजू में एक वृक्ष उगा हुआ था और वो वृक्ष जो है ऊपर बहुत बड़ा था और उसकी जो डाली थी बिल्कुल कुएं के नीचे बीच में लटक रही थी। वह दौड़ते दौड़ते, खड़े रहने का समय नहीं था, पीछे सिंह पड़ा था, खा जाएगा, दौड़ा और कुएं के किनारे से जोर से छलांग लगाई और उस डाली के ऊपर लटक गया और सिंह कुएं के बाहर खड़ा रह गया। अब सिंह बाहर देख रहा है कि कब ये ऊपर से बाहर निकले और मैं इसे खा जाऊं। और उतने में वह डाली पकड़ के बिल्कुल सेफ हो गया कि सिंह से बच गया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर नीचे गई तो अंदर कुएं में मगरमच्छ था। देखिए भौतिक जगत के में सुख कैसा है, बाहर सिंह खड़ा है और कुएं में मगरमच्छ है, वो भी मुंह खोल के बैठा है कब ये गिरे। और उतने में वो भागने के कारण हाथ में पसीना निकल रहा था तो जो डाली पकड़ी थी वो धीरे 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 सरक रही थी और उस डाली के ऊपर एक अजगर बैठा था, वे भी धीरे 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 उसके पास आ रहा था। बाहर सिंह खड़ा है, नीचे मगर है, ऊपर अजगर है और उसी वृक्ष के ऊपर बहुत सारी मधुमक्खी ने मधु जमा किया हुआ था और उस समय उस मधु में से मधु की एक बूंद गिरी, बिल्कुल उसने ऐसे मुंह खोला और वो मधु उसके मुख में गिरा टपक, तो वो हनी उसके जीवा में, उसके मुख में आने पर वाह आज तो आनंद आ गया। वो व्यक्ति को उस समय मधु का एक बूंद पीने में जो आनंद आया वो आनंद हमको आ रहा है, उससे ज्यादा आनंद नहीं है हमारे जीवन में। लेकिन जैसे ही आंख खुली तो सिंह बाहर खड़ा है, ऊपर से अजगर आ रहा है, नीचे मगरमच्छ खड़ा है, यही हालत हम सबकी है। काल रूपी अजगर हमको धीरे धीरे नष्ट कर रहा है और इस संसार के जो स्वजन है वो मगरमच्छ और सिंह की तरह खाए जा रहे हैं और उसमें थोड़ा सा अनुकूल स्थिति हो जाती है तो हम सोचते हैं कि हम सुखी हो गए, परंतु वास्तव में इस जगत में सुख नहीं है। सुख मात्र भगवान के धाम में है और हम लोग इस जगत में सुख का अनुभव करते हैं, वह सुख नहीं, वह दुख निवृत्ति की अवस्था है। माया के द्वारा निरंतर दुख मिल रहा है, निरंतर दुख, और दुख मिलना स्टॉप हो गया तो हम सोचते हैं कि हम सुखी हो गए। सुखी नहीं हुए, वे जीरो लेवल पर हम पहुंचे, अब तक माइनस में थे। मुंबई में रहने वाले इसका अनुभव कर सकते हैं। मान लो आपको बोरीवली आना है चर्च गेट से और भूल से आप विरार ट्रेन में चढ़ गए, विरार ट्रेन में चढ़ गए और धीरे धीरे वह ट्रेन फुल होती गई, हाउसफुल, और उसमें भी भूल से भी किसी ने पूछ लिया कहां उतरना है, हम कहेंगे बोरीवली, तब तो है साले, बोरीवली का ट्रेन नहीं मिलता है, विरार की ट्रेन में चढ़ते हो। और उसमें बहुत बड़ा ग्रुप यदि मिल गया तो थप्पड़ भी खानी पड़ेगी, तो इस प्रकार से डरते हुए फिर ये कंफ्यूजन, ये गेट पे खड़ा रहूं या ये गेट पे, रॉन्ग साइड में उतरूं राइट साइड में, तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तब कैसे भी करके कौन सी भी एक साइड पकड़ लेते हैं, उसमें बोरीवली का यार्ड आता है 15 मिनट वहां, और उसमें गर्मी का सीजन है, पंखे बंद है, पसीना निकल रहा है, पसीने से लथपथ व्यक्ति टेंशन में है, बोरीवली उतरने मिलेगा या नहीं। वे प्लान बना लेता है कि चलो दहीसर उतर जाऊंगा, पूरा टेंशन में है। और जैसे ही बोरीवली स्टेशन आया और कहा कि ए भाई जरा जाने दो बोरीवली उतरना है, तब तो सब लोग गाली देंगे, अब तक क्या सो रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। फिर कैसे भी करके सब लोग धक्का देकर उसे बाहर निकालेंगे। जैसे ही ट्रेन से निकलेगा, डेढ़ घंटे से ट्रेन में परेशान होता आ रहा है, जैसे ही ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतरेगा, यार आनंद आ गया, सोचते हैं मजा आ गया। हम उसको सुख मान बैठते हैं, हम सोचते हैं कि हम सुखी हो गए, सुखी नहीं हुए। डेढ़ घंटे से कंटिन्यू दुख मिल रहा था, वह दुख स्टॉप हो गया तो हम सोचते हैं सुखी हो गए। सुख इस संसार में नहीं, सुख भगवान के धाम में है। भगवान ऋषभदेव अपने पुत्र को उपदेश देते हैं, यदि सुखी होना है तो भगवत धाम प्राप्त करना होगा। तो भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र कहते हैं कि हे पिताजी, तब अब आप हमें यह बताइए, भगवान के धाम में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम ऐसा क्या करें जिससे हम भगवान के धाम को प्राप्त हो सकते हैं। तब दूसरे श्लोक के प्रारंभ में भगवान ऋषभदेव कहते हैं, महत् सेवा द्वार माहूं विमुक्ते। हे मेरे पुत्रो, महत् सेवा द्वारम आहु विमुक्ते, विजय जी रामित प्रभु, ये कैसा सिटिंग अरेंजमेंट है, पहले यहां का फुल कर दीजिए और धीरे धीरे करके पीछे फुल करना चाहिए, ये सब डिस्टर्ब हो रहा है, आगे अब किसी को मत आने दो। हरे कृष्णा
हरे राम 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 हरे।
भगवान के धाम में जाने के लिए क्या करना होगा, कहते हैं महत् सेवा, महताम सेवा। महत् का अर्थ होता है महात्मा, ये भौंभो कर रहा है, इसका कुछ कीजिए। राधे 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 राधे, ठीक। हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
महत् का अर्थ होता है महात्मा, महात्माओं की सेवा करने से ही मुक्ति का द्वार जो है खुल जाता है। द्वारम आहु विमुक्ते, महात्माओं की सेवा मुक्ति का खुला द्वार कहा गया है। संतों की, महात्माओं की सेवा करने से ही हम भगवान के धाम को प्राप्त हो सकते हैं और इस जीवन में सुखी हो सकते हैं। देखिए, सुखी होने के लिए और भगवान के धाम में जाने के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें कुछ नया करना होगा, कुछ नई चीज करनी होगी, हमारे जीवन में कुछ नया लाना होगा, नहीं। सेवा करना आत्मा का स्वरूपगत स्वभाव है, हम सबका, इस संसार में जितने भी जीव है सबका स्वभाव है सेवा करना। रूप गोस्वामी भक्तिसामृत सिंधु में इसे बहुत डिटेल में कहते हैं। मनुष्य की बात नहीं, मनुष्य के साथ साथ जितने भी पशु हैं ये सब लोग सेवा करना जानते हैं, क्योंकि ये आत्मा का धर्म है। आत्मा सब कुछ भूल सकती है परंतु सेवा करना कभी नहीं छोड़ सकती। इस संसार में आप देखोगे सब लोग सेवा करते हैं, अन्य पशु पक्षियों की बात दूर रही, मनुष्य समाज में देखिए सबसे पहले व्यक्ति अपने शरीर की सेवा करता है। देखिए सेवा सब लोग करते हैं, कितनी शरीर की सेवा करते हैं, रोज सुबह जगते हैं, पहले दांत को साफ कर, दांत की सेवा है, फिर शरीर को साबुन से लक से धोते हैं, फिर इस शरीर की सेवा करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बिठाते हैं, भोजन एसी में बिठाते हैं, रात दिन शरीर की सेवा करते हैं। कुछ लोग शरीर की सेवा करते हैं, कुछ लोग अपने मां की सेवा करते हैं, कुछ लोग अपने पिता की सेवा करते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों की सेवा करते हैं, करते हैं ना। बेचारा रात दिन ऑफिस में मेहनत क्यों करता है, पत्नी और बच्चों के लिए। देखिए सेवा सब लोग कर रहे हैं, कुछ लोग अपने पत्नी की सेवा कर रहे हैं, सेवा। मैं 10-15 दिन पहले वृंदावन गया था तो एक दंपति आए, पति पत्नी दोनों मंदिर में आए, तो पत्नी ने सैंडल निकाला, पति के हाथ में एक थैली थी, पत्नी का सैंडल थैली में रख लिया और पति पीछे पीछे चलने लगा। वाह, शास्त्र में सती नाम तो सुना था कि जो पत्नी पति की सेवा करते हैं उसे सती कहते हैं, लेकिन ये तो सता देखने मिल गया, अद्भुत सता। आज सता का प्रमाण बहुत ज्यादा है। बात यह है कि सेवा सब लोग करते हैं, कुछ लोग अपनी गर्लफ्रेंड की सेवा करते हैं, टिकट की लाइन में 2 घंटा खड़ा रहेगा है? माता पिता कुछ कहेंगे उसका पालन नहीं होगा, नहीं मैं आपके आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, और गर्लफ्रेंड ने कह दिया तो मरने के लिए तैयार हो जाएगा। सेवा, कुछ लोग अपने ऑफिस के जो मालिक हैं, बॉस हैं, उनकी सेवा करते हैं, कुछ लोग अपने कुटुंब की सेवा करते हैं, कुछ लोग समाज सेवा करते हैं, समाज की सेवा, कुछ लोग देश सेवा करते हैं, देशभक्त होते हैं। सेवा सब लोग करते हैं क्योंकि सेवा करना जीव का, आत्मा का स्वरूपगत स्वभाव है। व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है, सेवा करना नहीं छोड़ सकता है। लेकिन होता क्या है, सब लोग सेवा कर रहे हैं और सेवा क्यों कर रहे हैं, इस संसार में व्यक्ति सेवा क्यों करता है? सेवा करने वाले को भी शायद न पता हो, परंतु सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि सेवा में कुछ सुख मिल रहा है, सेवा में कुछ आनंद है। परंतु इस जगत की, इस भौतिक जगत में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी सेवा करोगे तो कितना आनंद मिलेगा, एक बिंदु जितना, थोड़ा सा। रात दिन गधे की तरह मेहनत करो है? आनंद कितना, बिंदु जैसा। परंतु वही सेवा यदि भगवान के लिए करोगे तो समुद्र जितना आनंद मिलेगा है? इसलिए रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ का नाम रख दिया भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति करने से, भगवान की सेवा करने से कितना आनंद मिलता है, कते सिंधु के समान, और जगत में रहने वाले लोगों की सेवा करने से बिंदु के समान। अच्छा वर्ड मिल गया है, सिंधु बिंदु। तो सेवा करना सब लोग जानते हैं, परंतु बस थोड़ी सी बुद्धिमानी कि हम जो इस संसार में भौतिक संबंध, भौतिक लोगों की सेवा करते हैं तो उनके साथ साथ भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान की सेवा करने से सुख मिलता है, और भगवान से भी, भगवान की सेवा करने से भी ज्यादा सुख भक्तों की सेवा करने से मिलता है। भगवान की सेवा करोगे तो शायद थोड़ा बहुत दुख या भगवान की कृपा बहुत देरी से होगी, परंतु भक्तों की सेवा करोगे तो उसमें बहुत आनंद मिलेगा, बहुत कृपा मिलेगी और भगवत धाम प्राप्त होगा। इसलिए भक्तों की सेवा। साक्षात भगवान ने कहा है, भक्त पद जल, भक्त पद दुलियार, भक्त पद जल, भक्त मुक्त अवशेष तीन महाबल। भक्तों की सेवा करना ही सबसे बड़ा बल है। भागवत के अनेक प्रसंगों में इसी पंचम स्कंध में आगे चलकर सौराष्ट्र में शोभिर देश का एक राजा था जिसका नाम रहुगण था। राजा रहुगण भगवान की प्राप्ति करने के लिए सौराष्ट्र से गंगा सागर एक कोने से दूसरे कोने से हमारे भारत में जा रहा था। पालकी में सवार होकर राजा रहुगण सौराष्ट्र से गंगा सागर जा रहा था और इसी भगवान ऋषभदेव के पुत्र का तीसरा जन्म जड़ भरत के रूप में हुआ। और उस राजा रहुगण को रास्ते में मिले, कथा बहुत सुंदर है कि ये जड़ भरत जी जो थे जन्म से ही भगवान के भक्त थे और सोचे कि यदि मैं एक्सपर्ट बनूंगा भौतिक कार्यकलाप में तो घर वाले लोग ऑफिस में लगा देंगे, दुकान पे बिठा देंगे, इसलिए जन्म से ही जड़ की तरह रहने लगे, इसलिए उनका नाम ही हो गया जड़ भरत। तो कोई काम के नहीं रहे। पिताजी ने गायत्री सिखाने का बहुत प्रयास किया लेकिन ओम तक नहीं बोल पाए। वैसे तो सब कुछ जानते थे परंतु प्रकट नहीं कर रहे थे। पिताजी की मृत्यु हो गई तब उनके भाइयों ने इस जड़ भरत को खेत में रख दिया। खेत में होता है ना, पक्षी ना आए उसके लिए वो स्टेचू खड़ा रखा जाता है। दो लकड़ी होती है, एक सीधी क्रॉस और ऊपर मटका होता है, उसे शर्ट पहना देते हैं। उसे देखकर चिड़िया इत्यादि डर कर भाग जाते हैं। तो स्टेचू के रूप में जड़ भरत जी को खेत में रखा गया। एक दिन की बात, ये राजा रहुगण शोभिर देश से सौराष्ट्र से गंगा सागर जा रहे थे। चार कहार उसकी पालकी को उठा रहे थे, उनमें से एक कहार पालकी उठाने वाला बीमार हो गया। तो राजा ने कहा जाओ देखो कोई यदि मिल जाए पालकी उठाने वाला तो उसे। ये तीन लोग आए इस खेत में, जड़ भरत जी को देखा, हट्टे गट्टे मोटे थे, कहा कि राजा तुमको बुला रहा है पालकी उठाने के लिए, चलो। जड़ भरत जी गए, पालकी एक कंधे पर उठा लिए। राजा रहुगण की पालकी चलने लगी परंतु रास्ते में कुछ चींटी जड़ भरत ने देखी। और भक्त जो होते हैं किसी भी छोटे से छोटे जीव को भी दुखी नहीं करते हैं। तो जड़ भरत जी ने बहुत सारी चींटी देखी तो उस चींटी के ऊपर से छलांग लगा दी और इतने हट्टे कट्टे और मोटे मजबूत थे कि पालकी को जोर से पकड़े थे और छलांग लगाए वो तीन तो खड़े रह गए, अकेले पालकी को लेकर आगे चले गए। राजा रहुगण को अंदर ऐसा अनुभव हुआ जैसे बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर आ गया हो, गाड़ी तेज गति से चल रही हो। पता है ना, लग्जरी बस में तो इसका अनुभव नहीं होता है लेकिन बीएसटी वालों में इसका अनुभव होता है। ये बेस्ट वाले स्पीड ब्रेकर नहीं देखते हैं क्योंकि न तो उसको गरागी जमाने का कोई टेंशन होता है न तो बस बचाने का टेंशन। ये बस को याद करके मुझे एक छोटी सी कथा याद आई। एक बार एक प्रभु जी कह रहे थे कि एक बहुत बड़े वक्ता थे और मरने के बाद वो भगवान के धाम में गए तो भगवान के धाम में जय विजय ने उस वक्ता को कहा कि आप गेट के ऊपर वेटिंग करो। तो वो वक्ता थे, बहुत कथा कर चुके थे तो भगवान के धाम में गेट के पास वेटिंग करके बैठे थे। उतने में हमारे बॉम्बे का बीएसटी बस का ड्राइवर भगवान के धाम में पहुंचा और जय विजय ने कहा चलो आप अंदर जाओ भगवान से मिलो। तो वक्ता सोच में पड़ गए कि मैं तो यार इतना कथा भागवत सप्ताह किया, इतने लोगों को भागवत कथा सुनाया, मुझे वेटिंग में खड़ा रखा और ये बीएसटी बस के ड्राइवर को अंदर ले लिया, इसका कारण क्या है? तो वक्ता ने पूछा जय विजय को कि मैंने इतना कथा किया, आप मुझे वेटिंग में रख रहे हैं और उसको वो ड्राइवर को अंदर। बोले इसका कारण ये है, आप जब कथा करते थे ना तो जितने भी श्रोता थे सब सोते रहते थे। आपके कथा में सभी वक्ता सोते रहते थे, और ये बीएसटी बस का ड्राइवर इतना तेज बस चलाता था, इतना जोर से इमीडिएट ब्रेक मारता था, तो सब लोग हे राम करते थे। रात भर किसी यात्री को सोने नहीं देता था, ऐसा ब्रेक मारता था, हे राम है? इसलिए वो पहले अंदर आप बाहर बैठी में। श्रोता भी अच्छे मिलना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये तो कहीं आप लोग मुझे वेटिंग में न रख दो है? खैर, तो मैं कह रहा था जड़ भरत जी ने छलांग लगाई और राजा डिस्टर्ब हुए। राजा ने कहा क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? तो तीन कार थे, कहा एक नया व्यक्ति आया है, बेचारे को प्रैक्टिस नहीं है इसलिए अब नहीं होगा। फिर से चलने लगे, फिर से चीटी इत्यादि आई, तो फिर से जड़ भरत जी ने छलांग लगाई। राजा दुखी हुए, बोले क्या कर रहे हो, ठीक से चलाओ। फिर से चलने लगे, फिर से छलांग लगाई, फिर से राजा डिस्टर्ब। राजा ने उस जड़ भरत को बुलाया और पालकी में बैठे बैठे चाबुक दिखाकर कहा कि देखो अब की बार गलती हुई ना तो मैं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा, तुमको ठीक कर दूंगा। ये चाबुक देख रहे हो ना, इससे तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूंगा। जड़ भरत जी फिर से पालकी चलाने लगे, फिर से कुछ चीटी आई, फिर से छलांग लगाई। राजा ने कहा बस पालकी रोको। राजा पालकी से उतरे, हाथ में चाबुक लेकर जड़ भरत के सामने, मैंने कितनी बार कहा कि ठीक चलो ठीक चलो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। जड़ भरत अपने जीवन में पहली बार अपने मुख से शब्द निकाले, कहा राजन तुम किसको ठीक करना चाहते हो, पहले अपने दिमाग को ठीक करो। हम लोग इतना मेहनत करके पालकी उठा रहे हैं और आप गादी के ऊपर बैठे बैठे दुखी हो रहे हैं है? मेहनत हम कर रहे हैं, आपको हम लोग उठा रहे हैं और आप अंदर बैठे बैठे डिस्टर्ब। राजन पहले तुम्हारा मन ठीक कराओ। जड़ भरत जी ने बहुत उपदेश दिया, कहा कि तुम मुझे मारना चाहते हो, मुझे, अरे मुझे मार कर भी, मुझे कितना भी मारोगे मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक, आत्मा को कोई न तो मार सकता है, न काट सकता है, न जला सकता है, किसे मारोगे। राजा रहुगण के मन में हुआ कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान तो नहीं। राजा रहुगण दोनों हाथ जोड़ के जड़ भरत के चरणों में गिर जाते, बताइए आप कौन हो, क्योंकि नाहम विशक्के सुरराज वज्रात न त्रिशूलात न यमत से दंडात, मैं यमराज के दंड से नहीं डरता हूं, शिवजी के त्रिशूल से नहीं डरता हूं, मैं अग्नि सोम सूर्य किसी से नहीं डरता हूं, मैं डरता हूं तो वैष्णव अपराध से डरता हूं, शंके विषम ब्रह्म अवकूल माना, बताइए आप कौन है। तब जड़ भरत जी ने कहा कि आपने इतिहास में भरत राजा का नाम सुना था, बोले हाँ, बोले वो पूरी दुनिया के राजा, बोले मैं वही भरत हूं, मेरा ये तीसरा जन्म है। और बहुत सुंदर उपदेश दिए, परंतु उस समय ही जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को कहा कि रहुगण जी तुम क्या सोचते हो, रहुगणे तो तपसान याति, तुम ऐसा सोचते हो कि तपस्या से भगवान मिल जाएंगे, कभी नहीं, कोरी तपस्या से भगवान कभी नहीं मिलते हैं, न चाहिजिया, तुम क्या सोचते हो केवल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से भगवान मिलेंगे, कभी नहीं, क्या सोचते हो घर छोड़ देने से भगवान मिल जाएंगे, कभी नहीं। तब राजा रहुगण कहते हैं तो भगवान कैसे मिलेंगे, तब जड़ भरत जी कहते हैं विना महत्पाद रजोभिषेक, हे रहुगण जी जब तक भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों का सेवा नहीं करोगे, शुद्ध भक्तों के चरण की रथ से अपना अभिषेक नहीं करोगे, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। महत सेवा द्वार माहु विमुक्ते, महताम सेवा, महात्माओं की सेवा नहीं करोगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। महात्माओं की सेवा होनी चाहिए, जड़ भरत जी का यह उपदेश है। तो इस प्रकार इस संसार में जितने लोगों ने महात्माओं की सेवा की है सबने भगवान को पाया है, सब लोग सुखी हुए हैं। महात्माओं की सेवा होनी चाहिए। रामानुजाचार्य के कई सारे शिष्य थे, उनमें से एक शिष्य गृहस्थ थे, गृहस्थ में थे, परंतु रामानुजाचार्य अपने सभी ब्रह्मचारी शिष्यों से वह गृहस्थ शिष्य से ज्यादा प्रेम करते थे, उनके साथ ज्यादा लगाव था। तब जितने भी ब्रह्मचारी शिष्य थे उनके मन में प्रश्न उठा कि हम लोग रात दिन इनके साथ रहते हैं, घर बार छोड़ दिए, विवाह नहीं किए, इतनी तपस्या ब्रह्मचर्य, फिर भी हमारे गुरु रामानुजाचार्य उस गृहस्थ के शिष्य के साथ ही क्यों रहते हैं, उनको इतना प्रेम क्यों देते हैं। ये लोगों के मन में एक क्षोभ हुआ और एक बार नहीं रह सके अपने गुरु को कह दिए कि आप पार्शलिटी कर रहे हो, आप उससे ज्यादा प्रेम करते हो, हमसे कम प्रेम करते हो। तब रामानुजाचार्य के मन में हुआ कि इन लोगों को दिखाना होगा। तो एक दिन की बात, ये ब्रह्मचारी शिष्य अपने आश्रम में रात को सो रहे थे और रामानुजाचार्य इस ब्रह्मचारी शिष्यों की जो कोपिन थी, लंगोट थी, उस कोपिन को लेकर इसकी कोपिन को इसके बक्से में, इसकी कोपिन को यहां यहां वहां दो तीन कोपिन चुरा लिए। दूसरे दिन सुबह उठकर वह ब्रह्मचारियों ने देखा कि हमारी कोपिन कहां गई, कहां गई, सब लोग डिस्टर्ब हो गए और रामानुजाचार्य को कंप्लेंट की। ये बात हुई, 5-6 दिन बीते, तब रामानुजाचार्य ने सारे ब्रह्मचारी शिष्यों को बुलाकर कहा कि आप लोग एक काम करो, वो जो मेरा गृहस्थ शिष्य है ना, उनके घर पे जाओ और उनकी पत्नी ने जितना गहना पहना है वो चोरी करके लेके आओ। देखिए, गुरु अपने शिष्य को उपदेश देना चाहते हैं। गुरु के कहने पर ये सारे ब्रह्मचारी उस गृहस्थ के घर पर गए और वह पत्नी एक साइड सो रही थी। तो ये लोग गए और रात को उस पत्नी के, क्योंकि एक कान नीचे था एक ऊपर था, एक कान से गहना निकाल दिया, नाक से निकाल दिया, हाथों में से चूड़ी निकाल दी, वो पांव में से घुंघरू निकाल दिए। अब दूसरे पांव और दूसरे हाथ में जो गहना था वो कैसे निकाले? तो ये लोग एक हाथ से, एक साइड के अंग से सब सारे गहने निकल गए। तब उस गृहस्थ की पत्नी ने करवट बदली। तो ये सब ब्रह्मचारियों को लगा कि लगता है ये जग जाएगी, सब लोग भाग कर चले गए। रामानुजाचार्य ने कहा, तुम लोग वापस क्यों आ गए? बोले, वो जग जाएगी तो। तब रामानुजाचार्य अपने सारे शिष्य को लेकर उस गृहस्थ शिष्य के वहां गए, वहां बाहर खिड़की से सभी शिष्यों को खड़ा रखा, देखो क्या हो रहा। तब रात को कुछ आवाज हुआ, वो जो गृहस्थ शिष्य थे वो जग गए और उसने अपनी पत्नी को कहा कि क्या हुआ, ये क्या, क्यों आवाज आ रही थी? तब उस पत्नी ने कहा, प्रभु क्या कहूं, वो कुछ ब्रह्मचारी आए थे चोरी करने के लिए। बोले, वे चोरी करने के लिए आए थे? बोले, हाँ, मेरा गहना और ये सब लेकर गए। बोले, तो ये हाथ और ये पांव का क्यों चोरी नहीं किया? बोले, मैं करवट बदल के सो रही थी, उस गृहस्थ ने जोर से थप्पड़ मारा अपनी पत्नी को। बोले, बेचारे हमारे घर पर आए थे और तुम्हारे अंग से कुछ गहने निकाल रहे थे, तो उनको कुछ जरूरत होगी, उनको कुछ बहुत बड़ी जरूरत आ पड़ी होगी, इसलिए यहां पर चोरी करने आए होंगे और तुम करवट बदल कर सोती रही। क्या तुमको पता नहीं चला कि उनको सारे गहने निकाल कर दे दे? तुमने बहुत गलत काम किया है, इतने बड़े संत, इतने बड़े भक्त हमारे घर पर आए और उनकी इच्छा को तुमने पूरी नहीं किया। और रामानुजाचार्य बाहर खड़े खड़े अपने सभी शिष्यों को दिखा रहे थे, देखिए मैं मेरे इस शिष्य से इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि वह महताम सेवा, वह महात्मा की, भक्तों की सेवा कर रहा है। इस प्रकार से जो लोग संतों की सेवा करते हैं उससे भगवान और गुरु प्रसन्न होते हैं। कई वर्ष पूर्व हमारे इतिहास में गौर मोहन दे नाम के एक व्यक्ति थे। उनका एक छोटा सा बालक था जिसका नाम अभय था। वे गौर मोहन जी के पास कोई भी संत साधु महात्मा कैसा भी व्यक्ति आता और कहता कि मुझे भिक्षा दीजिए, तो गौर मोहन जी अपने जेब से पैसे निकालकर उस अभय के हाथ से, उस अपने पुत्र के हाथ से पैसे दान कराते थे और इतना ही कहते थे कि आप मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए कि राधा रानी का भक्त बने। अनेकों बार गौर मोहन जी ने जीवन में एक भी संत को ना नहीं कहा, जीवन भर संतों की महात्माओं की सेवा करते गए और अपने पुत्र के हाथ से महात्माओं की सेवा कराई। भक्तों, वह महात्माओं की सेवा के प्रभाव से वह अभय एक दिन बड़ा हुआ, भक्ति सिद्धांत महाराज से दीक्षा प्राप्त करके ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के नाम से विख्यात हुआ। और केवल भारत में ही नहीं, समस्त विश्व भर में इस हरे कृष्ण महामंत्र का डंका बजा दिया। पूरे समग्र विश्व में कृष्ण भक्ति, भागवत और गीता के ज्ञान को प्रचार कर दिया। क्यों? महात्माओं की सेवा। महत सेवा द्वार माहू विमुक्ते। जब हमारे जीवन में आत्यंतिक कुछ परिवर्तन आ रहा हो, हम बहुत बड़े पापी हैं लेकिन कुछ अचानक हमारे जीवन में परिवर्तन हो गया हो, हम भक्त बन गए हो, समझ लेना चाहिए हमसे जाने अनजाने में महात्मा की सेवा हो गई है। और कभी आत्यंतिक हम भक्त हैं और आत्यंतिक भक्ति से हम गिर गए हो, तुरंत सोच लेना चाहिए कि बड़े महात्मा का हमसे कोई अपराध हो गया है। महात्मा की सेवा ही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। भक्तों की सेवा होनी चाहिए। कृष्ण के जो भक्त हैं, विष्णु के जो भक्त हैं, ऐसे वैष्णव की सेवा करने से ही हम मुक्ति के द्वार तक जा सकते हैं। तो भक्तों, सेवा होनी चाहिए। सेवा दो प्रकार की होती है, एक होती है वपु सेवा और एक होती है वाणी सेवा। महात्माओं की, संतों की दो प्रकार से सेवा कर सकते हैं। वपु सेवा का अर्थ होता है किसी संत को कुछ दान दे दिया, पैसे दे दिए या महात्मा के चरण दबा दिए, मस्तक दबा दिया, उनको कुछ कपड़ा दान में दे दिया, कुछ कंबल दान में दे दिया, इसे वपु सेवा कहा जाता है। परंतु वपु सेवा से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है वाणी सेवा। वाणी सेवा का अर्थ है महात्मा जो बोलते हैं उस उपदेश का हमारे जीवन में पालन करना, यह भी एक सेवा है। ऐसा नहीं है कि जाकर मात्र प्रभुपाद जी के चरण दबाना यही बहुत बड़ी सेवा है। प्रभुपाद जी ने या किसी भी महात्मा ने जो कहा है उसका पालन करो, यह महात्मा की सेवा हो गई। और ऐसी सेवा करने से विमुक्ति द्वारम आहु, विमुक्ति का द्वार खुल जाता है। तो हम सब भक्तों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। इसका सार यह है कि महात्माओं के मुख से ज्यादा उपदेश सुनना चाहिए। कभी भी महात्मा मिलते हैं, महात्माओं का संग करना और संग करके उनके मुख से उपदेश सुनना, और ऐसे संग की बहुत महिमा है। भगवान श्री रामचंद्र रामायण में कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता, सतसंगति संस्रुति कर अंता। महात्माओं का संग करने से क्या मिलता है? कहते हैं सतसंगति, महात्माओं की संगति संस्रुति कर अंता। ये महात्माओं की संगति जो है संस्रुति का अंत कर देती है। संस्रुति का अर्थ क्या होता है? सम्यक रूपेण श्रुति इति संस्रुति। सम्यक का अर्थ होता है पूरा पूरा, श्रुति का अर्थ होता है सरकना। जो रात दिन 24 घंटा सरकता रहे उसे संस्रुति कहते हैं, जिसे कोई पकड़ न सके, कितना भी पकड़ने का प्रयास करे लेकिन फिर भी सरक जाए, इसे संस्रुति कहते हैं। और उस संस्रुति को हिंदी में संसार कहा जाता है। भक्त, ये जो भौतिक जगत है ना, इस भौतिक जगत को संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि इस जगत में सब कुछ सरकता है। माँ के गर्भ से बालक सरकते हैं, बचपन से जवानी की ओर सरकते हैं, जवानी से बुढ़ापे की ओर सरकते हैं, विरार से चर्चगेट की ओर लाखों लोग सरकते हैं, चर्चगेट से विरार लाखों लोग सरकते हैं, घर से स्टेशन में सरकते हैं, यहां से वहां सरकते हैं, सब लोग सरक रहे हैं। और बहुत लोग पकड़ने का प्रयास करते हैं कि हम न सरके, हम बूढ़े न हो, कायाकल्प कराते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं तो काले कराते हैं। लेकिन आप कितना भी काले कराओ, कुछ भी करो, लेकिन ये जवानी एक ना एक दिन हाथ से सरक जाएगी। सरकना ये संसार का नियम है। कुछ लोग अपने धन को बहुत पकड़ के रखना चाहते हैं, तिजोरी में बंद करते हैं, आधे घंटे तक खींचते रहते हैं कि कोई ले न जाए, खुला न रह जाए। लेकिन कितना भी प्रयास उस धन को पकड़ने का करे, एक ना एक दिन सरक जाएगा। या तो धन हाथ से सरक जाएगा, या हम धन को छोड़कर सरक जाएंगे, उठ जाएंगे। सरकना ये संसार का नियम है। और इस संसार में यही तो दुख है, सरक रहा है सब कुछ, स्टेबल कुछ नहीं है। परंतु भगवान रामचंद्र अपनी प्रजा को उपदेश देते हुए कहते हैं, यदि महात्मा की संगति करोगे, संतों की संगति करोगे, तो ये जो सरकता हुआ संसार, ये भौतिक जगत का अंत हो जाएगा और आपको भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। परंतु इसके लिए क्या करना होगा? महात्माओं की सेवा करनी होगी। महत सेवा द्वारम आहु विमुक्ते। साक्षात चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, साधु संगे कृष्ण भक्ते श्रद्धा यदि है, भक्ति फल प्रेम है, संसार जाय क्षय। साधु संगे, महात्माओं में और महात्माओं की सेवा में यदि श्रद्धा होगी, महात्माओं की सेवा करोगे तो भक्ति फल प्रेम है, तो फल क्या मिलेगा? भगवान के चरणों में प्रेम, और संसार जाय क्षय, और ये संसार से मुक्त हो जाएंगे। हमारे वास्तविक धाम में, हमारे वास्तविक पिता के पास चले जाएंगे। कृष्ण भक्ति मूल है साधु संग। भगवत भक्ति का जो मूल है ये साधु संग है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भगवान कपिल देव कहते हैं कि यदि महात्माओं की सेवा करोगे, तज्जोषणादास अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। महात्माओं की सेवा से श्रद्धा रति भक्ति प्राप्त होगी, सुखी हो जाओगे, भगवत धाम प्राप्त होगा। महत कृपा बिन कौन कर्म भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति दूरे रही संसार नहीं क्षय। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि महत कृपा, महात्माओं की कृपा के बिना एक भी व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है। कृपा चाहिए महात्मा की, और उस महात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए महात्मा की सेवा करनी हो। कल कमलोचन प्रभु आए थे ना, यही चीज बताए थे, बहुत सुंदर बात बताई जो हमारे माइंड से दूर थी। बहुत सुंदर चीज कहे, महात्माओं की सेवा। बोले यही भागवत और यही हरिनाम आपके पास हो, परंतु महात्मा की सेवा नहीं कर रहे हो, तो यही भागवत और हरिनाम होते हुए भी आपका उद्धार नहीं हो सकता। यद्यपि भागवत भगवत प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ है, हरिनाम भगवान की प्राप्ति करा सकता है, परंतु भागवत और हरिनाम दोनों फेल हो जाएंगे यदि महात्माओं के अनुगत्य में यह नहीं करेंगे। यही भागवत भगवान का नाम महात्माओं की सेवा से, उनके अनुगत्य से करना चाहिए। महत सेवा, महात्माओं की सेवा, और उसके बिना तब आप कह सकते हो हम क्या करें महात्माओं की सेवा करने के लिए। आज महात्मा कौन है ये बाद में प्रश्न पूछा जाएगा, पिताजी आज तो ये ढूंढना ही मुश्किल है कि ये महात्मा है, ये महात्मा है, क्योंकि साधु वेश धरी साधु न होई, मात्र साधु का वेश पहन लेने से कोई साधु नहीं हो जाता है। तो आगे पूछेंगे महात्मा कौन है, फिर बताएंगे इसे महात्मा कहते हैं। परंतु आज हमारे बीच में महात्मा एकमात्र श्रील प्रभुपाद जी हैं, और यदि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा हो गई तो निश्चित हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो उस श्रील प्रभुपाद जी रूपी महात्मा को प्रसन्न करने के लिए क्या करना होगा? प्रभुपाद जी कैसे प्रसन्न होंगे? कृष्ण भक्ति का प्रचार करने से। आपने जो भी सुना है, आपने जो भी सीखा है, आपके पास जो भी है, दूसरों को सिखाओ। बस इस आंदोलन में आप भाग लो, इसे आगे बढ़ाओ, इससे महात्मा प्रसन्न होंगे, और महात्मा प्रसन्न हो गए तो मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। महत सेवा द्वार ना हो तो महात्मा की सेवा करने से। एक विशेष शब्द कह रहे हैं, विमुक्ते। महात्माओं की सेवा करने से क्या होगा? मुक्ति नहीं मिलेगी, विमुक्ति मिलेगी। अब देखिए, एक एक शब्द का मनन करना होगा। आपके श्लोक में महत सेवा द्वारम आहु विमुक्ते, मात्र मुक्ति नहीं है, मुक्ति के आगे वी शब्द लगा है। तो मुक्ति किसे कहते हैं और विमुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति का अर्थ होता है इस संसार के दुखों से मुक्ति, या इस भौतिक जगत से मुक्ति। यह है साधारण मुक्ति। और विमुक्ति का अर्थ होता है विशेष मुक्ति। दो प्रकार की मुक्ति, साधारण मुक्ति और विशेष मुक्ति। साधारण मुक्ति पांच प्रकार की है। कौन सी कौन सी? एक है साष्टी। इस मुक्ति में भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भगवान के पास जो ऐश्वर्य है, धन है, ऐसा धन प्राप्त हो जाता है। लेकिन भगवान के पास जितना ऐश्वर्य है, उतना ही ऐश्वर्य हमको प्राप्त हो जाता है। परंतु भगवान जितने सुखी हैं, उतना सुख हमको नहीं मिलता है इस मुक्ति में। दूसरी मुक्ति है सारूप्य, भगवान जैसा रूप प्राप्त हो जाना। तीसरी मुक्ति है सालोक्य, भगवान का लोक प्राप्त हो जाना। चौथी मुक्ति है सामीप्य, भगवान के निकट वास करना। और पांचवी मुक्ति है सायुज्य, भगवान में, ब्रह्म में लीन हो जाना। संसार में बस लोग यही सोचते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ज्योति में लीन हो जाएंगे। परंतु भगवान कपिलदेव अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हुए कहते हैं, साष्टी सारूप्य सालोक्य सामीप्य सायुज्य दीयमानम न गृह्णन्ति। इस संसार में जो मेरे भक्त हैं, उनको ये पांच मुक्ति यदि दी भी जाए तो उसे ठुकरा देते हैं, देने पर भी वो ग्रहण नहीं करते। क्योंकि ये पांच मुक्ति से भी एक मुक्ति जो है श्रेष्ठ है, उसे भगवान ऋषभदेव कर रहे हैं विमुक्ति। देखिए, ब्रह्म में लीन होना इसे मुक्ति कह सकते हैं, परंतु ये विमुक्ति नहीं है। विमुक्ति क्यों नहीं है? ब्रह्म में लीन होने से व्यक्ति अपने अस्तित्व को नष्ट कर देता है, अपना जो अस्तित्व है ब्रह्म में विलीन कर देता है। और विमुक्ति का अर्थ होता है मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिति। विमुक्ति का अर्थ है अपने स्वरूप में स्थित होकर भगवान की लीला में भाग लेना। अब ब्रह्म में लीन होना और विमुक्ति ग्रहण करना, ये दोनों में क्या अंतर है? आपको बता दूं सरल भाषा में, सायुज्य मुक्ति जिससे ब्रह्म में लीन हुआ जाता है, उससे व्यक्ति ब्रह्म में समा जाएगा, इसे क्या होगा, संसार का जो दुख है उस दुख से मुक्त हो जाएगा। बस यहां तक, संसार के दुख से मुक्त होकर ब्रह्म में लीन हो जाएगा। परंतु ये जो विमुक्ति है, ये विमुक्ति प्राप्त करके व्यक्ति भगवान की लीला में भाग लेगा, भगवान के साथ आदान प्रदान करेगा। इससे क्या मिलेगा उसे? संसार के दुखों से मुक्त हो जाएगा, प्लस इसके साथ साथ भगवान के साथ आदान प्रदान का सुख ग्रहण करेगा। तो बताइए, आपके पास यदि दो ऑप्शन हो, एक ऑप्शन, एक विकल्प जिसमें मात्र आप केवल दुखों से मुक्त हो सकते हो, और दूसरा विकल्प जिसमें आप दुखों से मुक्त हो सकते हो और उसके साथ साथ सुख भी प्राप्त कर सकते हो, तो आप कौन सा ऑप्शन स्वीकार करोगे, पहला या दूसरा? ये ठीक करो जल्दी। हरे कृष्णा कृष्णा, हरे राम, दूसरा ऑप्शन स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये सायुज्य मुक्ति में मात्र दुखों से मुक्ति है, परंतु जो विमुक्ति है उसमें दुखों से मुक्ति भी हो जाती है और भगवान के साथ आदान प्रदान का सुख भी मिलता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने स्वरूप को नष्ट नहीं करता है, सायुज्य मुक्ति प्राप्त नहीं करता है, बुद्धिमान व्यक्ति विमुक्ति ग्रहण करता है। तो यहां पर भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि यदि आपको विमुक्ति प्राप्त करनी है, विमुक्ति का अर्थ भगवान का पार्षद बनकर भगवान के साथ लीला में आदान प्रदान करना है, तो आपको महत सेवा, महात्माओं की सेवा करनी होगी। महात्माओं की सेवा करने से भगवान का धाम प्राप्त हो सकता है। और इसी बात से बिल्कुल विरुद्ध और आगे भगवान ऋषभदेव उपदेश दे रहे हैं कि महात्माओं की सेवा करोगे तो मुक्ति का द्वार खुल जाएगा, और यदि कामियों की सेवा करोगे तो नरक का द्वार खुल जाएगा। तमो द्वारम योषिता संगी संगम, आगे कहते हैं तम का अर्थ होता है नरक। दो द्वार का वर्णन हुआ, एक तो विमुक्ति का द्वार, अब ये तमो द्वार माने नरक का द्वार, दो द्वार दिखा रहे हैं। मुक्ति के द्वार में जाना है तो महात्माओं की सेवा करो, और नरक के द्वार में जाना है तो क्या करो? योषिता संगी संगम। योषित का अर्थ होता है स्त्री। इसमें दो चीज है, एक भगवान ऋषभदेव कहते हैं जो लोग स्त्री का संग करते हैं, स्त्री का संग का अर्थ होता है स्त्रियों के बारे में ही सोचना, पराई स्त्री को देखना, पराई स्त्री का संग करना, स्त्री का भूत सवार हो जाना। तो जो लोग स्त्रियों का संग करते हैं, ऐसे लोगों का संग करने से आप नरक के द्वार में पहुंच जाओगे। देखो, स्त्रियों का संग करने की बात तो दूर ही रही, स्त्रियों का जो संग करता है ऐसे पुरुष का भी संग नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर यहां पर भेद दृष्टि का वर्णन कर रहे हैं। तमो द्वारम योषिता संगी संगम, भगवान ऋषभदेव का कहना है कि संसार में किसी भी व्यक्ति को स्त्री की आसक्ति में नहीं फंसना चाहिए। मैं आगे 15-20 मिनट जो बोलने जा रहा हूं, मैं एक चीज बोलूंगा कि स्त्री की आसक्ति में नहीं फंसना चाहिए, तो ये उपदेश पुरुषों के लिए हुआ ना, तो माताएं अपने आप समझ लेवे जब मैं ऐसा बोलूंगा, तो आपको समझना है पुरुष की आसक्ति में न फंसे, क्योंकि दो दो चीज एक साथ में नहीं बोलूंगा, इससे टाइम वेस्ट होगा, नहीं तो फिर होगा ये तो केवल पुरुषों के लिए उपदेश है, माताओं के लिए नहीं, लेकिन दोनों के लिए उद्देश्य। बात समझ में आ गई कि किसी को भी स्त्री की आसक्ति में नहीं फंसना है, इससे दो उपदेश निकला, क्या कि पुरुष को स्त्री की आसक्ति में नहीं फंसना है, स्त्री को पुरुष की आसक्ति में। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। तमो द्वारम योषिता संगी संगम, योषित का जो संग है, स्त्रियों का जो संग है, तमोगुण का द्वार है। भक्तों, इस संसार में आसक्ति बहुत प्रकार की होती है, धन में आसक्ति, ऑफिस में आसक्ति, गाड़ी में आसक्ति, घर में आसक्ति, मोबाइल में आसक्ति, बहुत आसक्ति, लेकिन सबसे बड़ी आसक्ति स्त्री और पुरुष की आसक्ति है, क्योंकि ये जो आसक्ति है दोनों ओर से भड़कती है। कैसे? यदि आपको पैसे में आसक्ति है तो ये आसक्ति आपकी ओर से है, आप पैसे में आसक्त, पैसा आप में आसक्त नहीं है, है ना, ये एक ओर से वन साइड लव कहते हैं ना, वन साइड प्रेम। यदि आपको कार में, कोई गाड़ी में आसक्ति है तो आपको गाड़ी में आसक्ति है, गाड़ी को आप में आसक्ति नहीं है। यदि आपको घर में आसक्ति है तो आपको घर में आसक्ति है, घर को आप में आसक्ति नहीं है। लेकिन यदि आपको स्त्री में आसक्ति है तो स्त्री को आप में आसक्ति है, इसमें डबल दुगुना आसक्ति उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इस संसार में ये स्त्रियों की आसक्ति जो है सबसे बड़ी आसक्ति मानी गई है। चैतन्य महाप्रभु ने जब क्रम बताया, न धनम न जन्म न सुंदरी, धन की आसक्ति से व्यक्ति एक बार मुक्त हो सकता है, मान प्रतिष्ठा सम्मान ये सब की आसक्ति से मुक्त हो सकता है, लेकिन स्त्री की आसक्ति से मुक्त होना बहुत मुश्किल है। परंतु भगवान ऋषभदेव कहते हैं यदि नरक में जाने से बचना है तो स्त्री की आसक्ति से मुक्त होना। ध्यान रखिए, स्त्री को सोचना है, मुक्त होना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम आसक्त नहीं रहेंगे, लेकिन वेदों में एक बहुत सुंदर श्लोक है, ग्रीत कुंभ समान नारी पुमान तप्त अंगार समान। नारी जो है जलते हुए कोयले के समान है, नारी जलते हुए कोयले के समान है, और पुरुष जो है घी का भरा हुआ घड़ा है। यदि तस्मात एतत वैहिणीं च, यदि घी का भरा हुआ घड़ा गरम गरम कोयले के बाजू में रखा जाए, तप्त अंगार के बाजू में रखा जाए, तो वह घी पिघल ही जाएगा। वैसे पुरुष ने यदि नारी का थोड़ा सा संग किया, पुरुष ने स्त्री को थोड़ा भी देख लिया, थोड़ा भी संग हुआ, तो निश्चित वह आसक्ति होनी ही है। इसमें कोई दोराई नहीं है, कितना भी ज्ञानी हो पंडित हो, परंतु ये आसक्ति एक ऐसी चीज है, व्यक्ति फंस जाता है इसमें। हमारे इतिहास में अनेक लोग ऐसी आसक्ति में फंसे हैं, और फंसकर भगवान की उन पर कुछ कृपा हुई और उन्होंने अपना अपना अनुभव दिया है। जैसे ययाति महाराज, ययाति महाराज अपनी पत्नी में बहुत आसक्त थे। अपनी पत्नी देवयानी और शर्मिष्ठा, और बहुत समय तक उन्होंने भोग किया। एक दिन की बात, उन्होंने अपनी पत्नी का कुछ विपरीत कार्य कर दिया। देवयानी ने कहा था कि तुम मेरे अलावा किसी स्त्री के साथ संग मत करना, और ययाति महाराज ने शर्मिष्ठा के साथ संग किया, उससे पुत्र उत्पन्न किया। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी, अपने पिता के घर पर चली गई, और ये ययाति महाराज उसके पीछे पीछे गए उसको लेने। और जब पिता को पता चला तो शुक्राचार्य ने ययाति महाराज को श्राप दे दिया, तुमने मेरी पुत्री को दुखी किया है, श्राप देता हूं तुम बूढ़े हो जाओ। जवानी में ही बूढ़े हो गए। ययाति महाराज प्रार्थना करने लगे, अभी तो मुझे बहुत भोग भोगना था, आपने मुझे बूढ़ा बना दिया, आप मेरा कुछ कीजिए। तब शुक्राचार्य ने कहा, मैं ये श्राप वापस नहीं ले सकता हूं, लेकिन एक वरदान दे सकता हूं, आपके चार पुत्र हैं, उनमें से एक पुत्र भी अपनी जवानी दे देगा, आप जवान हो जाओगे। ययाति महाराज अपने घर पर आए और काम वासना से इतने मोहित थे, इतने कामी थे, अपने जवान पुत्र की खुद जवानी ले लिए, पुत्र को बूढ़ा कर दिया। हजारों वर्षों तक भोग किया, और जब उसे वैराग्य आया, भागवत में वर्णन है, बहुत दुखी हुए, हृदय से बहुत दुखी हुए, और दुखी होकर एक दिन अपनी पत्नी देवयानी को एक कथा सुनाई। बहुत विस्तार से यह कथा कही जा सकती है। एक दिन ययाति महाराज कहते हैं, जब उसे वैराग्य हुआ तो अपनी पत्नी देवयानी से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, और ये कथा एक बकरे की है। ये बकरा और कोई नहीं, ययाति महाराज खुद थे। बोले, एक बकरा था, और वह बकरा एक बकरी में आसक्त हो गया। बकरी में आसक्त हुआ, बकरी के साथ विवाह किया, लेकिन एक दिन वह बकरे ने बकरी के से विपरीत काम किया, वह बकरी अपने घर पर चली गई। बकरी जा रही थी अपने घर पर, बकरे ने उनका पांव पकड़ा, जमीन पर लौटने लगा, मजनू बन गया, कहां जा रही हो, एक बार तो मिलो, तुम याद करो, हम उस होटल में मिले थे, हम उस गार्डन में मिले थे, याद करो वह दिन, एक बार तो मुझे मिलो। उस बकरे ने बहुत मनाया बकरी को, परंतु बकरी नहीं मानी। और फिर उस बकरी का जो रखवाली करने वाला ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण ने उस बकरे के अंडकोश को काट दिया। बकरे ने बहुत प्रणाम किया कि प्रभु ऐसा मत कीजिए, मुझे बहुत भोग भोगना है। तो ब्राह्मण की कृपा से वह इंद्रिया वापस मिली, और बकरे ने उस बकरी के साथ हजारों वर्षों तक भोग किया। और तब ययाति महाराज एक श्लोक का उच्चारण किए हैं। वैसे तो बहुत सारे श्लोक बोले हैं, लेकिन ययाति महाराज ने अपना अनुभव कहा, शायद हमारे लिए काम में आ जाए। कहते हैं, या दुस्त्यजा दुर्मति भी जीतियो ना जीतिए। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ही काम को वश करने में जीत नहीं सकता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति काम को नहीं जीत सकता है। ताम तृष्णाम दुनिवहाम शाम कामो दुसम त्यजेत। व्यक्ति कितना भी बूढ़ा हो जाता है परंतु कामनाओं से मुक्त नहीं हो सकता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये बूढ़े हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक कामना कम हो जाएगी। नहीं, जीवन भर यही किया है, काम भोग किया है, तो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। उनकी इंद्रियां काम नहीं कर रही है लेकिन मन में तो कामना का भूत सवार होता है। हम देखते हैं ना, कभी कभी तो हृदय में बहुत दुख होता है। 60-60 साल के बूढ़े अपनी लड़की के लड़की की उम्र वाली छोटी सी बालिका जा रही है, उसको घूर घूर कर देखते हैं। कामना नहीं गई, बूढ़े हो गए। ये स्त्रियों से कामना निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए सतर्क रहना चाहिए कि उस स्त्री के मोह में फंस न जाए। हमारे इतिहास में और एक नवम स्कंद में कथा है, पुरुरवा नाम के एक राजा हुए और ऐसे चक्रवर्ती सम्राट, इतने गुणवान, यहां तक भगवान के भक्त थे और ऐसा राज्य कर रहे थे, ऐसा राज्य कर रहे थे, उनका गुणगान तीनों लोक में हो रहा था। एक बार नारद मुनि पुरुरवा महाराज का गुणगान इंद्र के लोक में, स्वर्ग में जाकर कर रहे थे कि इंद्र देवता आप क्या राज्य कर रहे हो, पुरुरवा महाराज को देखिए कितना सुंदर राज्य कर रहे हैं, उनके गुण को देखिए। नारद मुनि पुरुरवा महाराज की प्रशंसा कर रहे थे, स्वर्ग में उर्वशी नाम की एक अप्सरा थी, उन्होंने ये सुन लिया। सुनकर तुरंत पुरुरवा महाराज के राज्य में आई। पुरुरवा महाराज ने उर्वशी को देखा, बस देखा। उस उर्वशी को देखकर पुरुरवा महाराज मोहित हो गए। पुरुरवा महाराज ने कहा, आप कौन है, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। तो स्त्री ने कहा, आप भी बहुत सुंदर लग रहे हो। कहानी शुरू यहां से ही शुरू होता है ना, दोनों ओर से। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। कैन यू फ्रेंडशिप विथ मी, ओके, नो प्रॉब्लम। उर्वशी और पुरुरवा महाराज के बीच में फ्रेंडशिप हुई। और शुरुआत में सोचते हैं बस जस्ट फ्रेंडशिप, ज्यादा कुछ नहीं, लड़कियों के साथ बात करेंगे और कुछ होता है। ये युद्ध जो आए हैं ना, उसका अनुभव मैं आपको सुना रहा हूं। कहते हैं ये लड़की के साथ गुण, बोले तो केवल बातचीत करते हैं, लेकिन बातों बातों में ही कब वो हो जाता है, फिर वो धीरे 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 वो काम आगे बढ़ता है, फिर वह सोते हुए लड़की को याद करता है, जगते हुए लड़की को याद करता है, कब वो मिलेगी, कब फोन में बात करेगी, फिर प्रेम शुरू हो जाता है। फिर वो लड़की सोचती है कि वो लड़के के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ और लड़का लड़के के बिना नहीं रह सकता है। दोनों विवाह करने की सोचते हैं लेकिन दोनों माता पिता ना कह रहे हैं कि आपका विवाह कभी नहीं होगा। तब क्या करते हैं, छुप छुप कर मिलते हैं, फिर भाग कर शादी कर लेते हैं। शादी कर लेते हैं तो फिर माता पिता वाले उस लड़के को मरवा डालते हैं और फिर लड़की आत्महत्या करके मर जाती है। ये घटना मैं आपको कोई कहानी नहीं कर रहा हूं। मेरा क्लासमेट था, मैं 9th स्टैंडर्ड में यही एमके स्कूल में पढ़ता था और मेरे क्लास में समीर नाम का एक लड़का था और मेरे साथ तीसरी कक्षा से कविता नाम की एक लड़की पढ़ रही थी और पढ़ने में इतनी स्कॉलर थी, टीचर ने उनको मॉनिटर बनाया था और मेरा होमवर्क चेक करती थी हम सब का क्लास में। 9वीं कक्षा में समीर और कविता दोनों एक ही क्लास में आए। अब क्या पता दोनों का चक्कर शुरू हो गया। हम लोग एक बार स्कूल से साइलेंट रिसोर्ट गए थे, वहां पर मैंने देखा कि ये दोनों एक साथ घूम रहे हैं। उस समय तो हम बच्चे थे, चड्डी पहनकर घूमते थे, लेकिन उनका प्रेम शुरू हुआ। दसवीं कक्षा में आए दोनों, समीर कविता दोनों साथ में, प्रेम हो गया। फिर तो दोनों कभी कभी मैं साथ में इंद्रप्रस्थ में भी उनको देखता था। एक आश्चर्यमयी बात, ग्यारहवीं कक्षा में जब एक दिन मैं इंद्रप्रस्थ में जींस पैंट खरीदने गया, तो उस जींस पैंट की दुकान में हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम था जितेश। उसने कहा, यार कल्पेश तू जानता है? बोला, क्या हुआ? बोला, वो जो हमारा समीर था ना, उसका एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा, कैसे? बोले कि कविता के माता पिता ने उसको मरवा डाला। तो बहुत दुख की बात है। छह दिन के बाद मैं घर पर टीवी देख रहा था, इन मुंबई चैनल में बिल्कुल शॉक करने वाली घटना, इन मुंबई में मैंने देखा कि कविता गले में फांसी का फंदा डालकर पंखे पर लटक कर मर गई। मेरे आंखों की देखे का आंखों देखा हाल ये घटना, आंखों के सामने दोनों मिले, घूमे, दो दिन गाना गाए, शादी किए, मर गए। यही है संसार। इसी प्रकार उर्वशी आई, राजा पुरुरवा मोहित हो गए, दोनों ने विवाह किया, और विवाह करके दोनों ने बहुत भोग भोगा। उर्वशी की दो शर्त थी, वो स्वर्ग से आई तो दो बकरी के बच्चे लेकर आई थी। कहा कि मेरे ये दोनों बकरी के बच्चे का आपको ध्यान रखना है। महाराज पुरुरवा ने कहा, ठीक है। एक दिन बकरी के बच्चे कहां पर चले गए, खो गए, और उर्वशी ने कहा कि अब मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, आपने मेरी शर्त को पूर्ण नहीं किया। पुरुरवा महाराज ने उस उर्वशी को बहुत रोका, बहुत रोका, परंतु वो मानी नहीं। उर्वशी स्वर्ग में चली गई, और यहां पर महाराज पुरुरवा बहुत दुखी हुए, राज्य में उनका मन नहीं लगा। रात दिन उर्वशी का स्मरण कर रहे थे, हा उर्वशी, हा उर्वशी, कहां हो तुम, कहां हो? कहते हैं सतयुग में इन्होंने विवाह किया था, त्रेता युग आ गया, पूरा सतयुग बीत गया, इतना भोग भोगा। त्रेता युग के प्रारंभ में महाराज पुरुरवा ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, और उर्वशी स्वर्ग से पृथ्वी पर नहीं आई तो महाराज पुरुरवा यज्ञ करके स्वर्ग में चले गए, और स्वर्ग में जाकर उर्वशी के साथ हजारों वर्षों तक भोग भोगा। और बहुत बहुत भोग भोगने के बाद एक दिन भगवान की कृपा हुई, और भगवान की कृपा से पुरुरवा महाराज को बुद्धि आई, और जब पुरुरवा महाराज को वैराग्य हुआ, तुरंत स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए। लेकिन पृथ्वी पर आकर पुरुरवा महाराज ने पहला काम क्या किया, एक गीत गाया, अपना अनुभव सुनाया, जो गीत श्रीमद् भागवत में एज इट इज लिखा है। भगवान कृष्ण अपने मुख से यह गीत उद्धव जी के सामने गाते हैं, जिसे ऐल गीत कहा गया है। वह गीत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जो लोग इस प्रकार स्त्री की आसक्ति में फंसते हैं, उसका अनुभव क्या है? कुछ लोग थोड़ा थोड़ा फंसे हैं, कुछ लोग आधा फंस चुके हैं, और कुछ लोग पूरा फंस चुके हैं, बस अब एंड उसका होने जा रहा है। लेकिन कुछ भी हो, इस अनुभव से, महाराज पुरुरवा के अनुभव से, हम हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। पुरुरवा महाराज हजारों वर्ष, युग के युग बीत गए, भोग करने के बाद वे अपना अनुभव सुनाते हैं। क्या एल वाच, क्या कहते हैं? अहो मे मोह विस्तार, ओहो मेरे मोह का विस्तार तो देखो, काम कलमश चेतस, मैं काम का कीड़ा बन गया था, कीड़ा। देव्या गृहित कंठस्य नायु खंडा इमे जना, उस उर्वशी के आलिंगन करने में, उनका चुंबन करने में मेरे जीवन का लंबा समय बीत गया, लेकिन मुझे बुद्धि नहीं आई। ना हम वेदाभि निर्मुक्त सूर्य वापि दियो भुना, रात और दिन, दिन और रात बीतते गए, सालों के साल बीत गए, लेकिन मुझे एक बार भी यह नहीं हुआ कि मैं कितना गिर चुका हूं। अहो मैं आत्म सम्मोहो येनात्मा योषितम कृत। अरे मेरे मोह का विस्तार तो देखो, मैं उस स्त्री के हाथ का एक खिलौना बन गया था। क्रीड़ा मुर्ग चक्रवर्ती नर देव शिखामणि, मैं एक दिन का चक्रवर्ती सम्राट राजा पुरुरवा, तीनों लोक में मेरा गुणगान होता था, स्वर्ग का इंद्र भी मुझे देखकर लज्जित हो जाता था। मैं पुरुरवा उस स्त्री की आसक्ति में एक लंपट एक बंदर की तरह बन गया, क्रीड़ा मृग बन गया। ये स्त्री की आसक्ति कहां से कहां पहुंचा देती है, व्यक्ति को गिरा देती है। गोस्वामी तो बहुत सुंदर लिखते हैं, नारी विवश नर सकल गोसाई,
नारी विवश नर,
नारी विवश नर सकल गोसाई,
नारी विवश नर
नारी विवश नर सकल गोसाई,
नारी विवश नर सकल गोसाई,
नाचे नर मर कटकी नाई,
नाचे नर मर कटकी नाई।
गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, नारी के वश में होकर व्यक्ति कैसा होता है, कहते बंदर के समान। आपने कभी बंदर पकड़ने वाले को देखा है? बंदर पकड़ने वाले बहुत चालाक होते हैं। कैसे पकड़ते हैं बंदर को? बंदर को पकड़ने के लिए एक पोर्ट एक कुंजा होता है, एक कांच का पात्र होता है जो ऊपर से बहुत पतला और नीचे से मोटा होता है, और उस कांच के पात्र में चना डाल देते हैं, और वह कांच का जो घड़ा होता है वो रास्ते के बीचों बीच रख देते हैं। बंदर देखते हैं इसमें बहुत अच्छे अच्छे चने हैं, बंदर जाता है धीरे 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 आगे बढ़ता है, और फिर चने के उस घड़े में वह हाथ डालता है, और हाथ डालकर उस चने को पकड़ता है, क्योंकि परंतु वह मुख जो है बहुत छोटा है, जैसे ही वो चना पकड़कर हाथ निकालने का प्रयास करता है तो हाथ निकलता नहीं है, बहुत प्रयास करता है। उतने में वह मदारी आता है धीरे धीरे, बंदर पकड़ने वाला। बंदर देखता है कि मदारी आ रहा है, मुझे पकड़ लेगा, लेकिन चना में आसक्त है। यदि वह बंदर चना को छोड़ दे तो हाथ तुरंत निकल जाए, लेकिन चना को छोड़ना नहीं चाहता है, और बस एकाएक वो मदारी आ जाता है और बंदर को पकड़ लेता है। फिर वो मदारी उस बंदर को लेकर गली गली में जाकर नाच नचाता है, कहता है हाथ ऊपर करो तो वो हाथ ऊपर करता है, कहता है पांव ऊपर करो तो पांव ऊपर करता है, कहता है दुल्हन बन जाओ तो दुल्हन। ऐसी हालत आज के पुरुषों की है, स्त्रियों के हाथ के खिलौने बन गए। अब देखिए मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, जिस माता पिता ने एक बालक को पाल पोष कर बड़ा किया है, भोजन कराया, स्कूल में पढ़ाया, खुद भूखे रहकर अपने बालक को पढ़ाया, परंतु यह बड़ा होता है इसका विवाह हो जाता है और ऑफिस से जब घर पर आता है तो माता पिता के कमरे में आशीर्वाद लेना उसे मिलना बात दूर रही, सीधा अपने पत्नी के कमरे में चला जाता है। क्यों? क्योंकि बंदर बन गया है, पत्नी ने इशारा कर दिया तो बस। इसलिए गोस्वामी को कहना पड़ा, नारी विवश नर सकल गोसाई,
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 नाचे नर मर कटकी नाई,
नाचे नर मर कटकी नाई।
महाराज पुरुरवा कहते हैं कि मैं उस स्त्री के हाथ का खिलौना बन गया। सब परिचय आत्मानम हित्वा तृण विवेश्वरम, वो स्त्री मुझे छोड़कर तृण की तरह छोड़कर जा रही थी। यान्ति स्त्रियम चान्वगमम नग्न उन्मत्त दुद्रुत, और मैं उस स्त्री का पांव पकड़ रहा था। कितना आसक्त था उस स्त्री में, मेरे मोह का विस्तार तो देखो। अरे धिक्कार है उस पुरुष को जो इतना सुंदर मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भी स्त्री में आसक्त हो जाता है। किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्री वीर्यस्य मनोरितम्। अरे व्यक्ति कितना भी बड़ा विद्या प्राप्त किया हो, व्यक्ति पढ़ने में कितना भी स्कॉलर हो, स्टैंडर्ड फर्स्ट आता हो, परंतु यदि स्त्री में आसक्त हो गया तो विद्या क्या काम की। किम विद्या किम तपसा, व्यक्ति कितना भी बड़ा तपस्वी हो, शौबरी ऋषि 60,000 वर्ष तक यमुना में जाकर तपस्या किए थे, 60,000 वर्ष, परंतु वह तपस्या क्या काम की जिस तपस्वियों को स्त्री ने मोह लिया। किम त्यागे न, वह त्याग क्या काम का जो स्त्री से मोहित हो जाता है, और वह मौन क्या काम का। कुछ लोग मौन लेकर बैठते हैं, अपनी वाणी को बंद कर देते हैं, परंतु स्त्री की आसक्ति से मुक्त नहीं हो सकते हैं। किम मौने न, वह मौन क्या काम का। मैं चक्रवर्ती सम्राट सर्व गुण संपन्न सब कुछ था मुझ में, परंतु स्त्री में आसक्त हो गया। स्वार्थ को विदम, अरे मैं मेरा स्वार्थ भी नहीं जान पाया। दिग्माम, मुझे धिक्कार है। मूर्ख पंडित मानिनम, और मैं अपने आप को पंडित मानता था, मैं अपने आप को एक्सपर्ट मानता था। आई एम समथिंग। आज के कॉलेज के लड़के क्या कहते हैं बताए, यार मैंने लड़की पटाई। कॉलेज के लड़के कहते हैं मैंने लड़की पटाई, परंतु मूर्ख नहीं जानता है लड़की ने तुझे पटा लिया है। कि खाली तो लड़के को ही होना है, जेब खाली होगी, समय खाली होगा। मूर्ख पंडित मानिनम, कुछ लोग सोचते हैं हम पंडित हैं, हम एक्सपर्ट हैं, इतनी लड़की पटाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, परंतु कहते हैं मूर्ख हैं सब लोग। अपने आप को भले पंडित समझते हो, अपने आप को एक्सपर्ट समझते हो, परंतु स्त्री की आसक्ति में फंसने वाला व्यक्ति मूर्ख है। स्त्री भी गोखर वचित, स्त्री की आसक्ति में जो फंसता है, महाराज पुरुष अपना अनुभव कह रहे हैं, वह गधे के समान है, वह बैल और गधा बन जाता है। स्त्री की आसक्ति में फंसा हुआ व्यक्ति ही गधे और बैल से अच्छा नहीं होता है, रात दिन टेंशन में होता है। सेव तो वर्ष भुगान में वर्ष अदरासमम, और उस उर्वशी का मैंने हजारों वर्षों तक भोग किया, लेकिन फिर भी न तृप्यत आत्मभू, लेकिन फिर भी मैं उसे तृप्त नहीं हुआ। आज कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे मन में यदि भोग करने की इच्छा हो तो उसे भोग लेना चाहिए, और कुछ मूर्ख लोग धर्म के प्रणेता अपने आप को धार्मिक मानते हैं और प्रवचन करते हैं कि मन को कष्ट मत दो, मन में जो भी इच्छा होती है सबसे पहले पूर्ण कर दो। किसी पराई स्त्री के साथ संभोग करने की इच्छा है तो कर लो। मूर्ख कही गई। यहां पर महाराज पुरुरवा अपना अनुभव दे रहे हैं, हजारों वर्षों तक युग बदल गया, मैंने भोग किया यह सोचकर कि भोग करके ये भोगों के प्रति मैं विरक्त हो जाऊंगा, लेकिन अपना अनुभव देते हुए कहते हैं वहनीर आहु तिभीर यता, ये भोग कैसा है, ये काम भोग करने की जो लालसा है अग्नि के समान है, और इस काम वासना को पूर्ण करना ये अग्नि में घी की आहुति के समान है। यदि कोई ऐसा सोचे कि हम भोग को भोग कर उस भोग करने की इच्छा से मुक्त हो जाएंगे तो ये कभी हो नहीं सकता है। आप जितना भोग भोगोगे उतना भोग भोगने की लालसा बढ़ती जाएगी। जैसे अग्नि जल रही है और उस अग्नि में किसी ने घी डाला तो वह अग्नि 2-3 मिनट के लिए शांत हो जाएगी, परंतु थोड़ी देर के बाद वह अग्नि 10 गुना और बढ़ जाएगी। वैसे भोग भोगने से विरक्ति नहीं आती है। मन में यदि कामना हो तो उसे दबाना चाहिए, उसे मुक्त होना चाहिए। और पुरुराम महाराज अब वास्तव में सच्ची बात कह रहे हैं। अब तक तो वे उर्वशी को कह रहे थे कि उसने मुझे लूट लिया, ये कर लिया, परंतु पुरुराम महाराज कहते हैं, बोधत्स्यापि देव्या में सुक्ता वाक्येन दुर्मते, उर्वशी का कोई दोष नहीं है, दोष मेरा है, मैं ही उसकी आसक्ति में फंस गया। वास्तव में इस संसार में हम किसी की आसक्ति में फंसे हैं, दोष किसी का नहीं, दोष हमारा है, हमारे मन का दोष है, हमारी बुद्धि का दोष है, हमारे मन ने गलत सोचा, हमारी बुद्धि ने गलत निर्णय लिया, ये दोष हमारा है। दूसरों को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। पुरुराम महाराज अफसोस कर रहे थे, अरे मैंने हजारों वर्ष नरक में कीचड़ में बिता दिए, मैं सोचता था कि वह सुंदरी है, बहुत सुंदर है, उसका आलिंगन करना, उनको चुंबन करना, परंतु स्त्री में है क्या, केवल स्त्री की बात नहीं, पुरुषों की, सबकी, लेकिन इसमें है क्या। हम सोचते हैं कि ये पुरुष बहुत अच्छा है, ये स्त्री बहुत अच्छी है, परंतु एक बार उसका विश्लेषण करके देखिए उसमें क्या है, खून है, मज्जा है, हड्डी है, कफ पित्त है, मल मूत्र बाल, ये सबको अलग अलग करके रखो, देखने की बात तो दूर रही, थूकेंगे भी नहीं। और इसी वस्तु को ब्रह्मा जी ने एक चमड़े में ढल दिया है और हम सोचते हैं वाह कितनी ब्यूटीफुल है, क्या है इसमें, मांस का लोथड़ा है, हड्डी है, मल मूत्र है, बाल है, और इसको हम सबसे सुंदर मानते हैं। वास्तव में ये अज्ञान है, इस अज्ञान से मुक्त होना है। और पुरुराम महाराज अफसोस करते हुए कहते हैं मैं उसमें फंस गया। श्री प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर कथा कहते थे, एक बार एक राजा अपने राज्य में गया और एक बहुत सुंदर स्त्री थी, उनका पति मर चुका था, घर पे अकेली रहती थी, तो राजा की उस स्त्री के ऊपर दूरदृष्टि हुई और कहा कि मैं कल तुम्हारे साथ संग करूंगा। लेकिन वह स्त्री सती थी, किसी भी पुरुष के साथ संग करना नहीं चाहती थी। दूसरे दिन राजा आया और वह स्त्री उस राजा का संग करना नहीं चाहती थी, जुलाब की गोली ले ली और वॉमिट, लूज मोशन, ये बहुत होने लगा। राजा दूसरे दिन आया, दरवाजा खोला, वही स्त्री खड़ी थी, परंतु राजा ने कहा कि हे बूढ़ी माता जी, कल जो बहुत सुंदर स्त्री इस घर पे थी वो कहाँ गई। तो बुढ़िया ने कहा कि वो मैं ही थी, मैं ही हूं। राजा ने कहा कल तो तुम बहुत सुंदर थी, आज इतनी कुरूप कैसे हो गई, तुम्हारी सुंदरता कहां चली गई। राजा ने कहा कल सुंदर थी, आज सुंदर नहीं दिख रही हो, तुम्हारी सुंदरता कहां चली गई। तब इस स्त्री ने वो वॉमिट को, मल को, मूत्र को सब कटोरे में भर के रखा था। राजा ने कहा वो सुंदरता आपको देखनी है, चलो मैं आपको लेकर जाती हूं। और जो पात्र में ये सब भर के रखा था राजा को दिखाए, ये है मेरी सुंदरता। राजा को सत्य का ज्ञान हुआ, वास्तव में संसार में कोई सुंदरता नहीं है, बस हम मान बैठते हैं, हैं? मूर्ख पंडित मानिनम, हम मान लेते हैं कि ये सुंदरता है, परंतु वास्तव में सुंदरता नहीं है। इसलिए इस आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। यदि महाराज पुरुरवा को पूछा जाए, मान लो महाराज पुरुरवा को पूछा जाए, आप तो अनुभवी हैं, ऐसी स्त्रियों की आसक्ति से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तब महाराज पुरुरवा अंत में कहते हैं तस्मात संगो न कर्तव्य। यदि ऐसी आसक्ति से बचना है तो स्त्री का संग कभी भी नहीं करना चाहिए। यही बात भगवान ऋषभदेव कहते हैं, तमो द्वारम योषिता संगी संगम, योषित का संग, स्त्रियों का संग नरक का सीधा द्वार। गीता में भगवान कृष्ण कहते त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मन, काम क्रोध तथा लोभ तस्मात एतत् त्रयम् त्यजेत। काम जो है नरक में जाने का सीधा द्वार है, इसलिए कभी भी पराई स्त्री को देखना तक नहीं चाहिए। दारू भी प्रकृति है, मुनेरपि मन, हा हंत साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु जब सन्यासी थे, अपना आचरण से दिखाए कि पराई स्त्री को तो देखना ही नहीं है, लेकिन पराई स्त्री का फोटो भी जीवन में कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पराई स्त्री का फोटो भी यदि देख लिया तब भी व्यक्ति विचलित हो सकता है। इसलिए एक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, कभी भी किसी भी स्त्री में आसक्त ना हो। एक संत ने बहुत सुंदर गाया है, बहुत सुंदर अपना अनुभव सुनाया है, मैं भी आपको संक्षिप्त में सुनाऊं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
अब सोने की सुंदरी हवे वास सुमा, जो जननी हो आपनी
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बहुत सुंदर बात कहते हैं, यदि सोने की प्रतिमा भी हो तब भी उसके बाजू में नहीं बैठना चाहिए। वेदव्यास जी जब शास्त्र लिख रहे थे तो वेदव्यास जी ने गणपति को कहा कि आप लिखिए कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को पराई स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, यहां तक एक सन्यासी को भी किसी भी स्त्री का संग नहीं, स्त्री के साथ एकांत में नहीं बैठना चाहिए। तो गणेश जी लिख रहे थे लेकिन जैमिनी जो थे वह एडिटिंग कर रहे थे, वेदव्यास जी को कहा रुकिए रुकिए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम तो बड़े बड़े मुनि हैं, हम महात्मा हैं, हम जैसे मुनि यदि किसी स्त्री को उपदेश देने के लिए उनके साथ बैठे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। आप ये बात गृहस्थों के लिए रखो, हम जैसे साधु संतों के लिए मत रखो। वेदव्यास जी ने कहा कि एक काम करते हैं, इसका निर्णय हम कल लेंगे। वेदव्यास जी अपने घर पर चले गए, गणेश जी अपने घर पर, और जैमिनी ऋषि अपने घर पर चले गए। अपने घर पर जाकर सो गए, कुटिया में सो रहे थे। उस दिन अचानक बारिश हुई और रात को 12 बजे एक स्त्री उस बारिश में भीगती भीगती जैमिनी ऋषि की कुटिया में आई। दरवाजा खटखटाया, जैमिनी ऋषि ने अंदर से कहा कौन हो, बोले मैं एक अबला नारी हूं, स्त्री हूं, आप दरवाजा खोलिए, मुझे पनाह दीजिए। जैमिनी ऋषि ने कहा कि हम कोई स्त्री को पनाह नहीं देते हैं और इतनी रात को हम आपका दर्शन भी नहीं करेंगे। स्त्री ने कहा आप कैसे ऋषि मुनि हो, आपको दया नहीं आती है। जैमिनी ऋषि ने दरवाजा खोला, स्त्री का शरीर भीगा हुआ, साड़ी भीगी हुई थी। जैमिनी ऋषि ने कहा एक काम करो, आप इस कुटिया के अंदर रहो, मैं बाहर सो जाऊंगा, और आप अंदर से दरवाजा बंद कर देना, यदि मैं कहूंगा फिर भी मत खोलना। स्त्री कुटिया में सो गई, जैमिनी जी बाहर सोए। रात को 12 बजे जैमिनी ऋषि सोए, करवट बदलने लगे, 12:30 एक बजा, और जो भीगी हुई साड़ी और उस स्त्री का जो दर्शन किया था अब याद आने लगा। बोले वास्तविक आनंद तो ये गृहस्थ लोग ले रहे हैं, हम तो खाली फोकट तपस्या कर रहे हैं। नींद नहीं आई, सो नहीं पाए, रात को 2 बजे जगे, अपने बिस्तर से खड़े हुए, दरवाजा खटखटाए, दरवाजा खोलिए। अंदर से उसने स्त्री ने कहा मैं नहीं खोलूंगी। बोलो मेरा घर है, दरवाजा खोलो। बोले आपने ही कहा था दरवाजा मत खोलना, मैं नहीं खोलूंगी कुछ भी हो जाए। उस स्त्री ने दरवाजा नहीं खोला। जैमिनी ऋषि ही उस कुटिया के ऊपर छत पे चढ़ गए और छत के बीच में से नीचे टपके आए, अंदर आए और उस स्त्री को कहा, देखो मैं तुम पर मोहित हो चुका हूं और मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूं। स्त्री ने कहा, देखो ठीक है मैं तुम्हारे साथ विवाह तो करूंगा, लेकिन तुमको घोड़ा बनना होगा। बोले रात को 12 बजे 2 बजे कौन देखता है, बन जाऊंगा। ओके फिर मैं तुम्हारे पीठ के ऊपर बैठूंगी और फिर तुम इस कुटिया की 7 प्रदक्षिणा लगाओगे, फिर मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। बोले 2 बजे ऐसे कोई देखने वाला था नहीं। जैमिनी ऋषि घोड़ा बने, वह स्त्री उनकी पीठ के ऊपर बैठ गई। जैमिनी ऋषि एक चक्कर लगाए, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा, 7वां चक्कर समाप्त हुआ। जैमिनी ऋषि कहे, चलो उतरो। वस्त्री छलांग लगाकर उतरी। जैमिनी ऋषि खड़े हुए तो वेद व्यास जी खड़े थे। वेद व्यास जी स्त्री का रूप लेकर आए थे। कहा, जैमिनी जी कल तुम कह रहे थे कि हम लोगों को ऐसा करने की क्या जरूरत है, स्त्रियों का एकांत में संग। जैमिनी ने कहा, प्रभु मैं समझ गया, अभी गणपति को बुलाइए और अभी लिखवाइए, कल सुबह नहीं करनी है। स्त्रियों का संग, बड़े बड़े महात्मा इसमें मोहित हो गए तो हम कौन सी खेत की मूली है, क्यों मोहित नहीं होंगे। इसलिए
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नारी कहे कि ना हरे नकसिक सो यह खाए, जल उड़ा तो डूब भगोड़ा वह जा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
कर रहे हैं। संत लिखते हैं, नारी कहूं के नाहरी, नारी का अर्थ है सिंह शेर, मैं इसे नारी कहूं के सिंह कहूं। सिंह क्या करता है, जो भी व्यक्ति मिलता है उसके खून को चूस लेता है, और नारी, गोस्वामी कहते हैं, दिन को डाकिनी रात को वागिनी, दिन को पॉकेट खाली करती है और रात को खून खाली करती है। देखो आप बुरा मत लगाना, दोनों के लिए चल रहा है तो कल माताओं की संख्या कम होगी। और एक्चुअली ये बात जो है साधारण स्त्रियों के लिए है, जो लोग भागवत कथा सुनते हैं इस सेमिनार में आते हैं वो तो महात्मा होते हैं, आपके लिए नहीं है, संसार के भौतिक लोगों की बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि एक बार यदि कोई समुद्र में डूब गया, समुद्र में यदि कोई डूब गया तो वो बच सकता है, लेकिन नारी की आसक्ति में डूब गया उसका कभी चांस नहीं है। इसलिए
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वैसे तो बहुत बात कह रहे हैं, हमारे पास समय कम है, लेकिन अंत में जो पंक्ति लिखी है अद्भुत है।
जहां काम तहां राम नहीं, राम तहा नहीं काम, जो कब हूं ना करे काम राम इक ठाम। जहां
मेरे पीछे गाइए,
जहां काम तहा राम नहीं, राम तहा नहीं काम,
जहाँ काम तहाँ राम नहीं, राम तहाँ नहीं काम। दो कब हूँ ना करे राम नाम एक ठाम। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, जहाँ काम होता है वहाँ कभी राम नहीं होते। कुछ लोग सोचेंगे कि हम कामना भी करेंगे और भक्ति भी करेंगे, ये कभी हो नहीं सकता। जहां काम नहीं वहां राम नहीं, और जहां राम है वहां काम नहीं। जहां काम होते हैं होता है वहां राम नहीं होता है, और जहां राम होते हैं वहां काम नहीं होता है। तो मन में प्रश्न हो, यदि हम ऐसी आसक्ति में फंस गए तो क्या करना चाहिए?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे।
तो इस प्रकार तमो द्वारम योषिता संगी संगम। देखिए, मैं सोच रहा था कि एक दो श्लोक हो जाएगा, इसलिए मैंने ड्रामा वालों को कुछ ऑर्डर देकर रखा था। लेकिन अब एक काम करते हैं, थोड़ा जंप लगा देते हैं, फिर कल थोड़ा रिवर्स कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद वाले श्लोक में चले जाते हैं।
यो वा महिषे कृत सोहो हरदारथा, यो वा मई
कृत सौहदार था।
जनेषु देहं भरवार्तिकेषु,
जनेषु देहं भरवार्तिकेषु।
भगवान ऋषभदेव अपने पुत्र को कहते हैं कि भगवान का धाम प्राप्त करने के लिए महात्माओं की सेवा कीजिए, और नरक में जाने से बचने के लिए स्त्रियों के संग से दूर रहिए। तब मानो स्त्रियों के संग से दूर रहने के लिए कहा, तो वह 100 पुत्रों ने पूछा, पिताजी तब तो जीवन में क्या आनंद आएगा? लोगों से फ्रेंडशिप करना, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ मित्रता हो तो कुछ आनंद आए। प्रैक्टिकल हमको कैसे रहना चाहिए संसार में? तो इस श्लोक में भगवान ऋषभदेव प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। कहते हैं, आपको यदि फ्रेंडशिप डे मनाना है तो मनाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये फ्रेंडशिप जो है कृष्ण के साथ कीजिए। ये वा महिषे कृत सोहदार्था, वास्तविक मित्रता कृष्ण के साथ होनी चाहिए। भक्तों, इस संसार में मित्रता तो बहुत होती है। आप देखिए, एक व्यक्ति के सैकड़ों मित्र होते हैं, लेकिन वास्तविक मित्र उसे कहते हैं जो सुख दुख में साथ निभाए। आज के मित्र तो सुख में साथ में रहते हैं और दुख में ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं, मोबाइल करते हैं तो फिर मिस कॉल हो जाता है, क्योंकि वो भी समझदार है कि ये अभी परेशान करेगा। परंतु वास्तविक मित्रता निभाने वाले इस संसार में एक ही है, वो है भगवान कृष्ण। इतिहास खोलकर देख लीजिए, कृष्ण जो मित्रता निभाना जानते हैं वो इस संसार में कोई नहीं जानता है। और इस संसार में प्रचलित मित्रता कृष्ण और सुदामा। कहते हैं मित्र बनाना है तो कृष्ण को बनाइए, जैसे सुदामा ने कृष्ण को मित्र बनाया था। मित्रता कैसे हुई? भगवान श्री कृष्ण जब कंस का वध कर दिए और अपनी मां देवकी और वसुदेव जी को कारागार से मुक्त कराए, तो देवकी और वसुदेव ने कृष्ण और बलदेव को उज्जैन में सांदीपनि मुनि के आश्रम में पढ़ने भेजा। सोने के रथ पर सवार होकर जा रहे थे और उसी समय गुजरात में पोरबंदर में रहने वाला एक ब्राह्मण जिस लड़के का नाम सुदामा था, वह पोरबंदर से आ रहा था। यहां से कृष्ण और बलदेव जी जा रहे थे, ये लोग सोने के रथ में सवार थे और वह सुदामा नंगे पांव चलते हुए जंगल झाड़ियों के रास्ते से आ रहे थे और जंगल के रास्ते से आने के कारण पांव में कांटे लग गए। नीचे बैठकर कांटा निकाल रहे थे, उसी समय भगवान ने रथ पर खड़े खड़े देखा कि जो व्यक्ति मेरा एक छोटा सा नाम अपने जीवा पर लेता है वे बहुबंधन से दुनिया के करोड़ों बंधनों का कांटा निकल जाता है, साक्षात मैं खड़ा हूं एक छोटे से कांटे से परेशान। कृष्ण तुरंत रथ से नीचे उतरे और अपने मुख से निकल गया, मित्र कुछ परेशानी है? सुदामा ने कहा नहीं नहीं आप जाओ। बोले नहीं अब तो मित्र शब्द निकल गया है, अब तुम हमारे मित्र हो। बोलो क्या हुआ? सुदामा ने कहा कि कांटा लगा है। भक्तगण कहते हैं उस समय अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने उस सुदामा का चरण अपने हाथ में पकड़ा और अपने दांत से सुदामा के चरण का वह कांटा निकाला। यह है मित्रता, यह है कृष्ण की मित्रता। मित्रता निभाना जानते हैं। जहां भक्त मम पद धरे वहां धरू में हाथ। भगवान कहते हैं जहां मेरे भक्त चरण रखते हैं वहां मैं मेरा हाथ रख देता हूं। पीछे पीछे डोलू सदा में कभी ना छोड़ू साथ, कभी मैं मेरे भक्तों का साथ नहीं छोड़ता हूं। सुदामा को रथ पर बिठाया, गए गुरुजी के आश्रम में। एक दिन गुरुजी सबको श्लोक याद करने के लिए बताए थे, दूसरे दिन पूछ रहे थे। सुदामा का टर्न आया, सुदामा बोलो कल श्लोक याद करने के लिए कहा था। सुदामा ने कहा गुरुजी वो तो मैं भूल गया। बोले ठीक है तो आज जंगल जंगल में लकड़े काटने तुम जाओगे। और बाजू में ही कृष्ण बैठे थे, उनके मित्र थे। कृष्ण को कहा कि तुम बोलो। है गीता में खड़े खड़े कहते हैं वेदा हम समतितानी वर्तमानानी अर्जुन, ये अर्जुन भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता हूं। और कृष्ण गुरुजी को कह रहे हैं गुरुजी मैं भी भूल गया। ये है मित्रता। मित्र यदि क्लास के बाहर तो हम भी बाहर। हमारे क्लास में ऐसा होता था, हम लोग क्लास में बैठे बैठे बातचीत करते थे तो टीचर कहती थी कि आपको यदि बात करना है तो बाहर निकलो। वो तो फॉर्मेलिटी कर रही थी ताकि हम लोग शांत हो जाएं। लेकिन हमारी टीम कुछ ऐसी थी टीचर ने भूल से भी कह दिया बात करना है तो बाहर निकलो, तो एक साथ 10 जन निकल जाते, आधा क्लास खाली आधा क्लास खाली हो जाता था, फिर से बुला लेते थे आ जाओ। लेकिन वास्तविक मित्रता कृष्ण निभाते हैं। कृष्ण और सुदामा दोनों जंगल में लकड़े काटने गए। माता का कोमल स्वभाव, उसने कुछ चने दिए कृष्ण के लिए और सुदामा के लिए। कृष्ण ने कहा मैं कहाँ रखूंगा, एक काम करो सुदामा तुम भी मेरे चने रखो, बाद में भूख लगेगी तो मुझे दे देना। गोर जंगल में चले गए, एक बहुत सुंदर वृक्ष देखा। कृष्ण ने कहा सुदामा तुम नीचे खड़े रहो मैं जरा लकड़ी तोड़कर आता हूं। सुदामा ने कहा तुम तो राजा के लड़के हो है, तुम नीचे खड़े रहो मैं लकड़ी तोड़कर आता हूं। कृष्ण ने कहा 11 साल यही किया है हम लोग ने, ऊपर चढ़ना मटकी फोड़ना ये करना वो करना, एक्सपीरियंस है 11 साल का। कृष्ण गए ऊपर, बारिश हुई, सुदामा कृष्ण के और अपने दोनों के चने खा गए। देखो भगवान को भोग लगाए बिना जो भोजन करते हैं ना उसके जीवन में बहुत दरिद्रता आती है, जैसे सुदामा के जीवन में। तो इस प्रकार कृष्ण पेड़ से नीचे उतरे, कहा सुदामा मेरे जरा चना दो मुझे चने खाने हैं। सुदामा ने कहा वो तो मैं खा गया। कृष्ण के मुख से दरिद्र संबोधन निकल गया। 64 दिन के बाद कृष्ण तो वह गुरुकुल छोड़कर चले गए। सुदामा अपने स्थान में पोरबंदर में आए। कृष्ण फिर मथुरा से द्वारका में 16,108 रानियों के साथ विवाह और सोने की नगरी में पूर्ण ऐश्वर्य में जीवन जी रहे थे। और सुदामा ने सुशीला के साथ विवाह किया। 3-4 लड़के थे, परंतु जीवन में इतनी दरिद्रता आई, पहनने के लिए कपड़े तो नहीं थे, रहने के लिए छत नहीं थी, परंतु 15-15 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। छोटे छोटे बच्चे कहते, माताजी आज बहुत भूख लगी है, और मां मनाती रहती थी कल हम आपको भोजन देंगे। पड़ोसियों से मांग मांग कर खा खा कर जीवन बीत गया था, कोई देने वाला भी नहीं बचा था। और सुदामा के जीवन का व्रत था, मर जाएंगे परंतु किसी से मांगेंगे नहीं। अयाचक वृत्ति के थे, कभी किसी से मांगते नहीं थे। एक दिन सुशीला अपने पुत्र के दुख को नहीं देख पाई, अपने पति को कहा, पतिदेव मैंने सुना है कि कृष्ण जो द्वारका सोने की नगरी के राजा हैं, आपके मित्र हुआ करते थे। पतिदेव एक बार कृष्ण के पास जाइए, मैं जानती हूं कि आपका व्रत है, मर जाओगे परंतु किसी से मांगोगे नहीं, मैं जानती हूं, परंतु कृष्ण की एक दृष्टि भी आप पर हो गई ना तो हम सुखी हो जाएंगे, आप एक बार जाकर आइए। तब सुदामा ने अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर नहीं, अयम ही परमो लाभो कृष्ण दर्शन लालसा, सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि वाह भगवान ने मुझे कितनी सुंदर पत्नी दी है। देखिए दुख में भी भगवान की कृपा याद कर रहे हैं, वाह भगवान की कितनी कृपा है मुझ पर। इस संसार में तो लोगों को ऐसी पत्नी मिलती है, पतिदेव मंदिर में जाते हो तो पत्नी रोकती है, मत जाओ वहां, क्या है मंदिर में, घर पे रहो। और मुझे कितनी अच्छी पत्नी मिली है कि कृष्ण के पास भेज रही है, जाओ जाओ, धन्य धन्य आती धन्य हूं। कृष्ण का दर्शन की लालसा से सुदामा गए, लेकिन सुदामा ने कहा कि देखो हमसे किसी बड़े के वहां जाते हैं ना तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पड़ोस में से कुछ चावल लेकर आई, सुदामा उस चावल को लेकर जा रहे हैं, दुर्बल देह, लकड़ी के सहारे चल रहे हैं, और द्वारका बहुत दूर लग रही है। चलते चलते सुदामा द्वारका नगरी में पहुंचे, और द्वारका की नगरी के द्वार पे बहुत सारे द्वारपाल खड़े थे। सुदामा जैसे ही उस द्वारका नगरी में प्रवेश करना चाहे, द्वारपालों ने सुदामा को रोक दिया, तुम नहीं जा सकते हो, कौन हो तुम? सुदामा ने कहा कि मैं कृष्ण का मित्र हूं। सभी द्वारपाल हंसी उड़ाने लगे, हैं तुम्हारे जैसे लाखों आते हैं यहां पर रोज भीख मांगने के लिए, हैं कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? कृष्ण के लिए इस संसार में और लोग मर गए हैं कि तेरे जैसे भिखारी के साथ मित्रता करेंगे? अरे 33 करोड़ देवी देवताओं का राजा इंद्र भी कृष्ण के साथ मित्रता करने में शर्म करता है, लज्जित होता है, और ऐसा कृष्ण तुम्हारा मित्र है, चलो जाओ यहां से। सुदामा को धक्का मार दिया, सुदामा गिर गए। कभी कभी हमारे मन में हो सकता है, क्या द्वारका नगरी में द्वारका के द्वार पर ऐसी घटना घटी होगी? आप देखिए आज हमारे मुंबई में किसी थोड़े से रईस व्यक्ति के बंगले में जाते हैं तो 2-3 सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं, पसीना निकाल देते हैं, पूछ पूछ कर कहां से आए, कौन हो, क्यों आए। तो सोने की नगरी के राजा थे। सुदामा गिर गए, और गिरते गिरते सुदामा ने इतना ही कहा कि देखो मेरा देह दुर्बल है, और यदि मैं यहां पर मर जाऊं और कृष्ण कभी इस द्वार से बाहर आए तो कृष्ण को इतना ही कहना कि तुम्हारा मित्र तुम्हें मिलने के लिए सुदामा आया था। तब भी कृष्ण मेरी लाश के ऊपर आंसू बहाकर रोएंगे। सुदामा के मुख से यह सुनकर एक द्वारपाल के हृदय में दया आ गई और द्वारपाल ने सोचा शायद कृष्ण का मित्र हो सकता है। वो द्वारपाल कृष्ण के पास गया और उस समय भगवान श्री कृष्ण परम ऐश्वर्य में बैठे थे। 16,108 रानी उनकी सेवा में थी, सोने के सिंहासन के ऊपर विराजमान। और वह द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण को सुनाते हैं कि प्रभु आपको मिलने के लिए एक व्यक्ति आया है। शीश पगान जगातन पे जाने को आ ही बस एक ही गामा। प्रभु उसका शीश खुला है, जाने को आ ही वे कहां से आया है और कहां रहता है मैं नहीं जानता। धोती पटी सी लटी दुपटी और उपाय उपान की नहीं सामा। प्रभु उसकी धोती फटी हुई है, लकड़े के सहारे पर खड़ा है, वह दुर्बल देह है और बस आपका नाम लिए जा रहा है। प्रभु द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। बस वे आपको मिलना चाहता है प्रभु। तब कृष्ण कहते हैं क्या उनका नाम पूछा? तब वह द्वारपाल कहते हैं पूछत दीन दयाल को धाम। हे दीन दयाल, हे प्रभु, हे कृष्ण, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना तुरंत कृष्ण दौड़ते हुए सुदामा के पास गए, सुदामा को भेंट लिए, सुदामा को गले लगा लिए। द्वारका में रहने वाले सभी लोग सोचने लगे कि ये कृष्ण कभी तेज गति से चले नहीं है, आज इतने दौड़ क्यों रहे हैं। और कृष्ण जब सुदामा को लेकर आ रहे हैं सब लोग की आंखों में आंसू है, कृष्ण की आंखों में आंसू, सुदामा की आंखों में आंसू, और सब लोग ने देख लिया वास्तव में ये है मित्रता। एक छबड़े में दुनिया की अमीरी है और एक बल्ले में दुनिया की गरीबी है, लेकिन कृष्ण ने सुदामा को अपने महल में बुलाया, अपने सोने के सिंहासन पर बिठाया और कृष्ण सुदामा को कह रहे हैं कि सुदामा आपकी ऐसी स्थिति हो गई, अरे एक बार तो मुझे याद कर लिया होता तो आज ये दिन न देखने पड़ते। तब सुदामा रोते रोते कहते हैं कृष्ण मैंने तुमको याद नहीं किया तो क्या आप नहीं जानते थे कि मैं कितना दरिद्र हूं, मैं कितना दुखी हूं। सुदामा को सोने के सिंहासन पर बिठाए स्वागत कर रहे हैं भगवान कृष्ण, और कृष्ण अपनी रानी को कह रहे हैं कि सुदामा का चरण धोना है, चरण पखारने हैं, पात्र लेकर आओ। भगवान कृष्ण सुदामा के चरणों में बैठकर उनके चरणों को संवारते हैं। ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। भगवान ने जब सुदामा के चरणों में बड़े बड़े कांटे लगे हुए देखा, कृष्ण के हृदय में दुख उत्पन्न हुआ। हाय महादुख पायो सखा आये इतेन किते दिन खोए। हे सखा, आज मेरे हृदय में बहुत बहुत दुख हो रहा है, तुम पहले क्यों नहीं आए और तुम्हारे चरणों में इतने कांटे लगे हैं। सुदामा के यह दशा को देखकर देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की इस दीन दशा को देखकर आज करुणा का सागर कृष्ण को, हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृष्ण करुणा का सागर है परंतु सुदामा की इस दीन दशा को देखकर करुणा का सागर आज रोने लगा है। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान श्री कृष्ण आज बहुत रो रहे हैं और पानी परात को हाथ छुओ नहीं। रुक्मणी सत्यवामा पानी और पात्र को हाथ में लेकर खड़ी हैं। सुदामा के चरणों को धोने के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ी, पानी परात को नैन छुयो नहीं, नैन न के जल से पग धोए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आंख के आंसू से ही सुदामा के चरणों को धो दिए। सुदामा का स्वागत किया, इस प्रकार से भगवान ने सुदामा का स्वागत किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सुदामा आए हैं, सुदामा का स्वागत किया भगवान श्री कृष्ण। अब सुदामा को स्नान कराना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण। एक बाल्टी से सुदामा को स्नान कराए, 16,108 रानियां बाल्टी लेकर आई। सुदामा ने कहा, कृष्ण किसी का अभिषेक है, 16,108 बाल्टी से क्या करने, घर को धोने जा रहे हैं? बोले, नहीं सुदामा जी, आपको स्नान कराने आ रहे हैं। बोले, इतनी बाल्टी से स्नान करूंगा न्यूमोनिया हो जाएगा। काम करो, आप एक स्नान करा लो। फिर भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम किया, रुक्मणी ने प्रणाम किया, सुदामा आशीर्वाद देने लगे, अखंड सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव। लेकिन 16,108 सुदामा आशीर्वाद देते देते थक गए, फिर केवल हाथ ऊपर करने लगे। लेकिन 16,108 बार ऐसे ऐसे करके हाथ भी थक गया। कृष्ण, बस अब मैं आपको आशीर्वाद दे देता हूं, सबको आशीर्वाद मिल जाए। इस प्रकार सुदामा का स्वागत हुआ, भगवान ने सुंदर वस्त्र प्रदान किए और सुदामा के हाथ में जो चावल की बोरी थी, थोड़ा सा जो चावल था, वो चावल भगवान श्री कृष्ण ने लिया और खाया। भगवान श्री कृष्ण उस चावल को जैसे जैसे खाते जा रहे हैं, कृष्ण की आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं। रुक्मणी सत्य मामा पूछ रही है, कृष्ण आज आपको इतना आनंद क्यों आ रहा है? तब कृष्ण ने कहा, देवी सुदामा के इस चावल को खाकर आज मुझे नंद और यशोदा याद आ रहे हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के चावल खाए, जैसे जैसे चावल खाते गए वहां सुदामा की दरिद्रता का नाश करते गए। कृष्ण और सुदामा कई दिन रहे। अब सुदामा वापस लौटना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण सुदामा को विदा कर रहे हैं। सुदामा को देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। उद्धव जी ने, रुक्मणी ने पूछा, हे कृष्ण, इस सुदामा का देह इतना दुर्बल है, आपने अपने रथ को क्यों नहीं भेजा? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि मैं चाहता तो मेरा सोने का रथ सुदामा को बिठाकर पोरबंदर भेज सकता था, लेकिन देवी ये ब्राह्मण इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, इतना दरिद्रता थी, लेकिन एक बार भी बोला नहीं। ये ब्राह्मण बहुत पवित्र है और जहां तक इस ब्राह्मण के चरण पड़ेंगे वहां तक मेरी भूमि पवित्र हो जाएगी, इसलिए इस ब्राह्मण को चलाना चाहता हूं। सुदामा जी अपने घर पर पहुंचे और पोरबंदर में तो सब कुछ बदल गया था। सुदामा ने देखा कि अरे बाप रे, इतना बड़ा बिल्डिंग है, ये म्युनिसिपालिटी वाले भी झोपड़े रहने नहीं देते हैं, बहुत परेशान करते हैं ये लोग, हमारे झोपड़ी को तोड़कर अपना बिल्डिंग बना दिए इतना बड़ा। लेकिन उस बिल्डिंग के दूसरे माले से सुशीला ने पुकारा, पतिदेव अंदर आइए। बोले ये कौन अप्सरा बुला रही है। सुदामा गए तो उनकी पत्नी थी और सुदामा ने देखा कि सब कुछ बदल गया था। देखिए इसे कहते हैं मित्रता। भगवान जैसी सोने की द्वारका में रहते थे, ऐसे ही सोने की द्वारका कृष्ण ने सुदामा को दे दी। ये है मित्रता। इसलिए मित्रता करनी है तो कृष्ण से करनी चाहिए। कृष्ण ही हमारे मित्र हैं, फ्रेंड हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण को कैसे मित्रता करें, वो तो बोलते नहीं है। बुला कर तो देखो, कौन कहते हैं भगवान बोलते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। खिला कर तो देखो, कभी खिलाए। भगवान बोलते हैं, खाते हैं, आते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं, लेकिन हृदय में श्रद्धा और भाव होना चाहिए। इस प्रवचन को आगे कंटिन्यू किया जाएगा कल तक। सबको हरे कृष्णा, फिर मिलेंगे इसी स्थान पर इसी समय पर। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम।